نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. آج هم إن شاء الله تعالى سورة البقرة آيات نمبر 49 سے 59 تک کریں گے. دیکھتے ہیں پہلے لفظی ترجمہ. آیت 49 نکال لیں. وَإِذْ اور جب، اذ کا میں نے آپ کو معنی بتایا تھا کہ یعنی کسی ماضی میں ہوئے ہوئے واقعے کو یاد کرنا، کہ ہم جیسے کہتے ہیں یاد کرو جب یہ ہوا، تو اسی کو جب کہا گیا. نجیناکم، اس کو تھری پارٹس میں آپ ڈیوائڈ کر لیں. نجینا اور کم، نجی نجات سے، نجات دی، نا میں نے آپ کو بتایا تھا نا جب بھی اینڈ میں لگ جائے نون الف نا، یہاں پہ بھی نون الف نا ہے لیکن کھڑی الف کے ساتھ اس کو ظاہر کیا گیا. ہم نے کم تم کو، من سے آل فرعون، آل فرعون، آل کس کو کہتے ہیں یعنی گھر والوں کو بھی آل کہتے ہیں، اسی طرح فالوورس، عقیدت مند، پیچھے چلنے والے جو ہیں ان کو بھی آل کہا جاتا ہے. اسی لیے ہم درود شریف جب پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ہم کہتے ہیں علی آل محمد، ایسے بولتے ہیں نا. بعض لوگ اس کو غلط بول دیتے ہیں، الٹ ہی معنی کر دیتے ہیں، ولا آلی کہہ دیتے ہیں، آلہ کہنے کی بجائے ولا آلی، اور نہ ہو آل محمد پر، درود نہ ہو ان کے اوپر اللہ، تو مطلب الٹا ایک بدوا یا کلمہ بن جاتا ہے. اس لیے اس میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے. وہ اعلیٰ اوپر، جیسے ہم یہاں پہ اب آپ نے اعلیٰ کا معنی پڑھا ہے نا، علیکم کا پڑھتے ہیں اس میں بھی اعلیٰ آ رہا ہے، تو اپون کا معنی ہوتا ہے، تو اعلیٰ آلی ہے یہ، ولا آلی نہیں ہے. تو آلی فرعون، آل فرعون، یسومونکم، یسومونا ونون ہے تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ یہ جمع ہے. یسومون کا یا شروع میں آ گئی تو وہ کا معنی ہے، اور سوم بیچ میں جو ہے اس کو دیکھیں، سین و میم، ساما یسوم، اس کا مطلب ہوتا ہے تکلیف دینا کسی کو. تو یسومونا وہ تکلیف دیتے تھے، کم تم کو، سو العذاب، سو برا، العذاب عذاب کی، یذبحونا، یذبحون ذال با حا سے ہے. دیکھیں یا بھی ہٹا دیں وانون بھی ہٹا دیں تو بیچ میں کیا رہ گیا، ذبح کرنا اسی سے ہوتا ہے نا، لیکن یہاں پہ ذبح نہیں ہے، ذبح ہے، با کے اوپر آپ دیکھیں تشدید ہے. اس سے کوئی فرق پڑتا؟ ہاں فرق پڑتا ہے، معنی میں کیا فرق پڑے گا، معنی تو ہم ویسے ہی لکھیں گے مگر ایگزیجوریشن آ جاتی ہے، اور بھی ہم دیکھیں گے تفسیر میں کیا اس میں تھوڑا ڈفرنٹ ہوتا ہے. خوب ذبح کرتے تھے. اب یہ خوب کا معنی کیوں آیا؟ کیونکہ اس کے اوپر بہت زور ہے، یذب بھی ہونا. اب دیکھیں نا جب بولنے میں بھی شدت ہے تو اس میں شدت آ جاتی معنی میں بھی. ابناءکم، بیٹوں کو، ابن کی جمع، ابنا بیٹوں کو، کم تمہارے، وہ یستحیونا، اور دیکھیں آپ ہا یا سے ہائی بنتا ہے زندہ کرنا، تو زندہ چھوڑ دیتے تھے، نساءکم، نساء عورتوں کو کہتے ہیں، سورہ نساء بھی ہے، عورتوں کو تمہاری، وفی اور میں، ذالکم اس میں، بلا ان، بلا تھی، بلا اردو میں تو جب ہم بلا بولتے ہیں نا تو ہمارے ذہن میں کیا ہوتی ہے، مصیبت، لیکن عربک میں بلا آزمائش کو کہتے ہیں، ٹیسٹ، اصل میں ٹیسٹ بھی ایک مشکل ہی چیز ہوتی ہے، لیکن آزمائش کسی اچھی چیز میں بھی ہو سکتی ہے اور کسی بری چیز میں بھی ہو سکتی ہے. यानी खुशी की चीज में भी नेमत में भी हो सकती है और किसी मुसीबत में भी हो सकती है। तो बला का वैसे माना आजमाइश का होता है, और इंसान को आजमाइशें अच्छी नहीं लगती इसलिए वो इनको बला ही समझता है। बला उन आजमाइश थी, मेर रब्बी कुम मिन से रब रब कुम तुम्हारे तुम्हारे रब की तरफ से, यानी आदीम बहुत बड़ी। वह इध और जब फरक ना फाड़ा, फर्क से है फरक ना फाड़ा हमने, नून अलिफ ना है ना, तो फर्क का माना ही फाड़ने का अलग करने का होता है, जुदा करना। बिकुम तुम्हारे लिए, बी का माना यहाँ पे यानी लिए का आप करते हैं। अलबहर समंदर को भी बाहर कहते हैं, दरिया को भी कहते हैं, तो समंदर आप लिख दें। फअनजई नाकुम, फा अलग कर दे, अनजई अलग कर दे, ना अलग कर दे और कुम अलग कर दे, चार चीजें इससे बना लें आप। और अलग अलग जब आप माना करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। फ फिर अनजई निजात दी, वही जो पहले आया था नजई ना, तो अनजई निजात दी ना हमने कुम तुमको। वा अगरकना और गर्क कर दिया हमने आले फिरौन, आले फिरौन को। वह अन तुम और तुम तंदरून, तुम देख रहे थे, नजर से है देखना होता ना, और ता शुरू में आ गई तो तुम का माना है। अच्छा अब अनजईना और नजईना में क्या फर्क है, दोनों में स्लाइट सा फर्क। वैसे तो निजात दी हमने दोनों का ही माना है, लेकिन नजईना में बार बार का भी माना आ जाता है, शिद्दत और ज्यादा, जैसे युदब्बिहूना में आ गई, शिद्दत आ गई इसमें। वह इद वादना और जब वादा किया ना हमने मूसा अलैहि सलाम से, अरबा कहते हैं चार को, अरबाइन 40 का, लैलतन रातों का, थुम्मा फिर इत्तखज तुम, अखज करना होता ना कोई चीज, अखज करी मैंने इससे, तो इत्तखज तुम इसी को समझ लें, बना लिया तुमने। अल अजल, अजल कहते हैं बछड़े को, काफ गाय का बच्चा। मिम बाद ही, बाद इसके, मिन का चाहे आप तर्जुमा ना भी करें, बाद ही आप बाद इसके लिख दें। वह अन तुम और तुम जालिमून, जालिम थे। सुम्मा फिर आफाऊ ना, आफू किसको कहते हैं, हम दुआ भी करते हैं अल्लाहुम्मा इन्नका आफुवन, तो आफू है माफ करना, दरगुजर करना, दरगुजर किया ना हमने। आन कुम, कुम का माना तो आता है ना, तुम और कुम राइमिंग ही है, तो याद रख लें इसको, तुम कुम, कुम का आपने तुम लिख दिया, और अन से, अन का माना से होता है। मिम बादी दालिका, मिन का माना यहाँ पे नहीं भी करें आप, बादी बाद दालिका इसके। लाल्ला ताके, कुम तुम, तशकुरून तुम शुक्र अदा करो। कैसे आया तुम, ता जो शुरू में है वो तुम की है, शीन कैफ रा शुक्र, वाव नून बता रहा है तुम सब करो शुक्र अदा। वह और इज, जब, अब देखिए बार बार इज आ रहा है, यानी ये सब बातें इसका मतलब है याद कराई जा रही हैं, गुजर चुकी हैं। आतई ना, आतई दी ना हमने मूसा अलैहि सलाम को, अल किताब किताब, कौन सी किताब थी जो मूसा अलैहि सलाम को दी गई थी, तौरात। वल फुरकान और फुरकान, लअल्लकुम ताकि तुम, तहतदून तुम हिदायत पा जाओ। लअल्ला का माना शायद के भी होता है और ताके भी होता है, ठीक है, तो दोनों ही माने होते हैं इसके। व इज कौला और जब कहा मूसा अलैह सलाम ने, लिए कौमी ही, ली जब आता है तो से का माना होता है, काला के बाद जब भी ली आएगा से, ठीक है। काला के बाद एक दो लफ्जों में जो आगे लिया आ रहा होगा उसको से लिखते हैं। से कौम ही उसकी यानी अपनी कौम से, या कौमी, आपको मैंने पहले बताया था कि या अय्युहन्नास में, या अय्युहा निदा के लिए, और जब ए कोई अलिफ लाम के बगैर हो तो फिर सिर्फ या लग जाता है, जब अलिफ लाम के साथ हो मुनादा तो फिर या अय्युहा लगता है, जैसे वहां पे अन्नास था, यहाँ पे कौम है तो या कौमी बस। ए कौम, और मीम के नीचे जो जेर है वो बता रही है कि यहां पर या भी थी लेकिन वो गिर गई है। या कौमी, ए मेरी कौम, इन्नकुम, अब समझ आती, इन्ना अलग से लिखा होता है तो हम क्या तर्जुमा करते हैं, बेशक, कुम तुम, बेशक तुमने, जलम तुम, जुल्म किया तुमने, अनफुसकुम, नफ्सों पर, कुम तुम्हारे यानी अपने नफ्सों पर, बित्तिखादिकुम, बी यहाँ पे बिकॉज के मानों में है, बेवजह, बेवजह इसके के, किसके, इत्तखाजा पहले आया तो क्या मतलब था, बनाने का, बनाने के, कुम तुम्हारे, अल अजल बछड़े को, फतूबू, वाव अलिफ एंड में है, वाव अलिफ या वाव नून आ जाए तो मतलब जमा है, तुम सब तौबा करो, ठीक है, तूबू इसलिए आया, फ पस तूबू तौबा करो, इला तरफ बारी इकुम, बारी तुम्हारे अपने यानी बारी, बारी कौन होता है, अल्लाह ताला के नामों में से अलबारी, अल्लाह ताला का नाम है, ओरिजिनेटर, पैदा करने वाला, तो पैदा करने वाले की अपने, कुम जो तुम्हारा है यानी तुम्हारे अपने, फकतुलू तो कत्ल करो, अनफुसा कुम नफ्सों को तुम्हारे यानी अपने नफ्सों को, जब किसी को कहा जा रहा होता है ना सेकंड पर्सन को कि तुम ऐसे करो, तो यानी तुम्हारे यानी तुम्हारे उसके लिए तो अपना है ना, मैं जैसे आपको तुम्हारा बैग उठा लो ये तो नहीं कहती, मैं कहती हूँ तुम अपना बैग उठा लो, ठीक है, तुम्हारी किताब ले लो, तुम अपनी किताब ले लो, ऐसे कहते हैं ना, तो इसी तरह है कुम के माने यहाँ पे, फिर तुम्हारे नफ्सों में यानी अपने नफ्सों को, ज़ालिकुम, ज़ालिकुम और ज़ालिका अब एक ही बात है, ये खैरुन बेहतर है, लकुम लिए तुम्हारे, इंदा नजदीक, बारीकुम तुम्हारे बारी के, तुम्हारे पैदा करने वाले के, फताबा फिर वो मेहरबान हुआ, आप देखें यहाँ पे वाव अलिफ नहीं है एंड में, यहाँ पे ताबा है, वहां पे क्या है, तूबू है, तो ताबा जब आएगा तो सिंगुलर है, वाहिद है, और मैंने आपको बताया था कि अल्लाह ताला के लिए भी ये लफ्ज आता है और इंसान के लिए भी आता है, जब आगे आला आ रहा हो तो फिर किसके लिए, अल्लाह के लिए, ये याद रखिए, जब आगे इला आ रहा हो तो फिर किसके लिए, इंसानों के लिए, इंसान तौबा करें, इला बारीकुम, देखिए अब आपके सामने दोनों के फर्क बिल्कुल वाजे हो गए जो मैंने आपको उस दिन बताया था, तो या जहां पे आला आ रहा है वहां पे आपने समझ लेना कि ये अल्लाह ताला का तौबा करना मतलब अल्लाह का मेहरबान हो जाना, अल्लाह का पलट आना उसकी तरफ, अल्लाह ताला जो नाराज हो गया था उसने अपनी तवज्जो वापस इसकी तरफ कर दी है, अपनी रहमतें समेट के, अपनी रहमतें लेकर उसकी तरफ मुतवज्जे हो गया, ठीक है, तो समझ आ गई, अब दोनों में तूबू इला है और ताबा आला है, ठीक है, मेहरबान हुआ अलैकुम तुम पर, अपॉन यू, और इला होता है तरफ, तो बंदा अल्लाह की तरफ करता है, अल्लाह ऊपर है वो आला, उसके ऊपर मेहरबान होता है, इन्नहू बेशक वो, हुआ वही, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, हु भी है और हुआ भी है, वो जब दो दफा आ जाएंगे तो बेशक वो ही तो है, जैसे हम कहते हैं वो ही तो है, अत्तवाब बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला और बार बार तौबा कबूल करने वाला, अर रहीम बार बार रहम करने वाला, ये पहले भी इसी तरह आ चुका, तवाब और रहीम। वह इज कुल तुम, और जब कहा तुमने या मूसा, ए मूसा, लन, एक हमने ला पढ़ा था, एक लन है हरगिज नहीं, नु मीना, शुरू में भी अगर नून आ जाए तो हम का ही माना होता है, ठीक है, हम ईमान लाएंगे। थोड़ा आपको फर्क बाद में बता दूंगी, अभी आप बस ये समझ लें कि शुरू में नून आ गया तब भी माने में हमने हम ही डालना है। हमजा, मीम, नून, अमन इसी से बनता है, ईमान भी इसी से बनता है। आप इतनी दफा आमिनु आमिलु सालिहात की तकरार पढ़ते हैं कुरान में, तो आमनु वो इसी से है, हमजा मीम नून। तो यहाँ पे नु मीना है, हम ईमान लाएंगे, लका लिए तेरे, हत्ता यहाँ तक के, नरा हम देख लें, अल्लाह को, अल्लाह हा है, हा के ऊपर जबर है, अल्लाह को, जहरतन, जहरा जैसे जहरी नमाज होती है ना, कौन कौन सी होती है जहरी नमाजें, फजर होती है, मगरिब होती है और इशा होती है, अंधेरे वाली नमाजें हैं जो जहरी नमाजें हैं। जहरी नमाजें कैसी होती हैं, जिनमें इमाम ऊंची आवाज में तिलावत करते हैं, तो उसको हम जहरी नमाज कहते हैं। तो वो ये जहरतन यानी सामने बजाहिर, फ अखदत और कुम, फिर पकड़ लिए, अखदा कुम भी हो सकता था लेकिन अखदत कुम है क्योंकि आगे जो चीज आ रही है जिसने पकड़ा है वो मुअन्नस है, फिर पकड़ लिया कुम तुमको, अखज करना पकड़ लेना बना लेना एक ही बात है। असाइका तू कड़कने, साइका कहते हैं ना बिजली की कड़क को, वह अन तुम, वाह का माना अगर इस हाल में लिखेंगे यहाँ पे तो ज्यादा बेहतर है, इस हाल में के अंतुम तुम तंजुरून, अब क्या तंजुरून में ता तुम, नून दोए रा, तो नून दोआ रा से क्या बनता है, नजर, तो नजर देखने के लिए होती है, देख रहे थे। सुम्मा फिर बास ना कुम, बास अलग करें, ना अलग करें और कुम अलग, बास उठाया ना हमने कुम तुमको, मिम बादी बाद, मौती कुम मौत के, कुम तुम्हारी, लअल्लकुम ताकि तुम, तशकुरून तुम शुक्र अदा करो, वज़ल्लल्ना, ज़ल्ल हम कहते हैं ना जिल्ले साया, जिल्ले हुमा ऐसे बोलते हैं, जिल्ले सुभानी, तो असल में कभी सोचा आपने कि दिल का माना क्या होता है, साये का, ठीक है, तो ज़ल्लल्ना साया किया ना हमने, अलैकुम तुम पर, अलगमाम, गमामत उनकी जमा है, अलगमाम ये बादल को कहते हैं, और ऐसा बादल जो बड़ा गाढ़ा होता है जो सूरज की रोशनी को जमीन पे आने से रोक दे, बारिश वाला बादल नहीं, ठीक, एक बादल के लिए सहाब भी आता है कुराने पाक में, लेकिन गमाम वो वाला बादल है जिसे बारिश नहीं होती सिर्फ शेड होता है। वह अनजलना और नाजिल किया ना हमने, आलई कुम आला ऊपर, कुम तुम्हारे, अलमन व सलवा, मन और सलवा, ये तफसीर में हम देखेंगे क्या है, आप ऐसे ही लिखें मन और सलवा। कुलू खाओ, ये हुक्म दिया जा रहा है खाओ, और वाव अलिफ एंड में तो यानी सब खाओ, कुल अगर सिर्फ होता तो फिर एक बंदे को कहते खाओ, कुलू जब आ गया वाव अलिफ आ गया एंड में तो मतलब सब के सब खाओ, मिन तय्यिबात, मिन से तय्यिबात पाकीजा चीजें, पाकीजा चीजों में से, यानी मिन तय्यिबात पाकीजा चीजों में से, माँ जो, रज़क और ना और कुम, रिस्क दिया, रिस्क दी ना हमने कुम तुमको, अब तो आपको डिवाइड करना आ गया होगा ना, अलग कर दिया कुम अलग कर दिया, रिस्क अलग कर दिया, तो इतना आसान हो गया। वामा और नहीं, ज़ालमूना हमने जुल्म किया, उन्होंने जुल्म किया ना हम पर, उन्होंने जलमून, असल में जलमून था, तो अब नून वो वाला गिर गया, उन्होंने जुल्म किया, वाओ बता रही है कि प्लूरल के लिए, उन्होंने जुल्म किया ना हम पर, वलाकिन लेकिन, कैनू थे वो, अनफुसाहुम अपने नफ्सों पर, यज़लिमून जुल्म करते, वो जुल्म करते, वाओ या जो है वो के लिए भी आप लिख दें उसके लिए, यज़लिमून वो जुल्म करते, व आर इज, जब कुलना कहा हमने, उदखुलू जैसे कुलू था खाओ, तो उदखुलू दाखिल हो जाओ, दाल खा लाम है ना, हादी हिल करिया, हादी ही ये यानी इस अलकरिया बस्ती में, हम उर्दू में भी बोलते हैं ना करिया करिया, बस्ती बस्ती, तो करिया बस्ती को कहते हैं, फकुलू फिर खाओ, फा यहाँ पे आ गया फिर, कुलू खाओ, मिन से हा इसमें से, हई तू जहां से, शि तुम, श होता है चाहना, तो शि तुम चाहो तुम, शाह जैसे इनशा अल्लाह माशा अल्लाह, रोगदन, रोगदन पहले भी आपने पढ़ा है खूब अच्छी तरह बाफरागत, वदखुलू और दाखिल हो जाओ, अलबाब दरवाजे से, सुज्जदन सजदा करते हुए, वकुलू और कहते जाओ, हित्तातुन, हित्ता कहते हैं बख्शिश दे दे माफी, नगफिर लकुम, नगफिर नून है शुरू में, हम बख्श देंगे, गैन फारा क्या है, गफारा, इसी से इस्तग़फार है ना, लकुम लिए तुम्हारे, ला लिए कुम तुम्हारे, खतोया कुम, खतोया खताओं को, कुम तुम्हारी, वा और स जरूर अनकरीब, नजीदू, नजीदू में नून भी अलग कर दें सीन भी अलग कर दें, तो सीन का मतलब तो है अनकरीब या जरूर के मानों में, नजीदू में नून अलग कर दिया तो नून का माना हम, अब रह गया जई या दाल, तो इससे क्या बनता है, ज्यादा, ज्यादा देंगे, जरूर हम ज्यादा देंगे, अल मोहसिनीन, मोहसिनीन कौन होते हैं, मोहसिन की जमा मोहसिनीन, एहसान करने वाले, फबदला तो बदल दिया, अल्लदीना जलमू उन लोगों ने, जलमू जिन्होंने जुल्म किया, जिसने नहीं लिखेंगे जिन्होंने, इसलिए कि वाउ अलिफ है, कौलन बात को, गैर अल्लदी गैरा सिवाय, जैसे हमने कहा गैर अल मगदूब अलैहिम, गैरा सिवाय अल्लदी उसके जो, कीला एक था काला एक आ गया कीला, कीला में कही गई, काला में उसने कहा, ठीक है किसने कही है ये नहीं पता चलता कीला में, बस कही गई थी, लहुम जब आगे आ गया यानी ला आ गया तो फिर माना क्या है, काला कीला के बाद से, उनसे कही गई थी उनसे, फअंजलना तो नाजिल किया ना हमने, फ तो अंजल नाजिल किया ना हमने, आला ऊपर, अल्लदीना उन लोगों के, जोला मुंह जिन्होंने जुल्म किया था, रिजजन, रिज जहां जहां पे भी आएगा कुरान पाक में इससे मतलब है सजा अजाब, ठीक है अजाब की कोई भी सूरत हो सकती, तो आप लिखें अजाब, मिनस्समा आसमान से, बीमा बी का माना यहाँ पे बवजह का लिखें, बिकॉज ऑफ, बेवजह मा जो, बवजह इसके जो, कैनू थे वो, काना भी होता है उसी का प्लूरल है कैनू, यफसुकून फा सीन काफ से, फिस्क, यानी फिस्क का माना क्या होता है, हम उर्दू में बोलते हैं फिस्को फुजूर, बड़े फासिक आदमी है वो। तो फासिक किसको कहते हैं, यहां पे तो है यफ सुकून या वो फिस्क आपने पढ़ा, और वाओ नून आपने देखा जमा का है, वो नाफरमानी करते हैं। तो फिस्क का माना क्या होता है, खुल्लम खुल्ला नाफरमानी करना अल्लाह की, खुल्लम खुल्ला गुनाह करना, कोई शर्म नहीं है, कोई हया नहीं है, कोई किसी का पर्दा नहीं है, बस ढिठाई के साथ, ठीक है, उसको कहते हैं फिस्क। देखते हैं अब तफसीर, कहानियां सुनने का शौक है आप लोगों को, कहानी का तो सबको बड़ा शौक होता है ना, तो आज एक कहानी सुनते हैं। कुराने पाक में भी आपको पता है बहुत सारी कहानियां आई हैं, लेकिन कुराने पाक की कहानियां उन कहानियों से अलग है जो आप ये ड्रामों में, इसमें फिल्मों में, अफसानों में पढ़ते हैं, इससे बहुत फर्क है। वो कैसी होती है, वो तो झूठी कहानियां होती हैं, झूठ झूठ, हमें पता भी होता है ये झूठ है, फिर भी देख देख के रोते रहते हैं। तो ये कुरान की कहानियां ऐसी नहीं है, ये सच्ची कहानियां, ऐसा ही हुआ, लेकिन अल्लाह ताला ने ये कहानियां बता के हमें इसलिए नहीं बताई कि हम एंटरटेन हो, इसलिए बताई कि इनसे हम सबक लें। आपको पता है हम छोटे बच्चों को कहानियां सुनाते हैं क्यों, उसके बाद बाज दफा, पहले की बात है, अब तो शायद नहीं ऐसा होता होगा कि एंड में लिखा भी होता है मॉरल, मॉरल ऑफ द स्टोरी, कि कहानी से क्या सबक मिला आपको, लेसन क्या मिला आपको। तो यहाँ पे जितने भी किस्से आए, कहानियां आई, इनके अंदर से लेसन हमें खुद निकालने अपने लिए, हमें क्या समझ आती है, अल्लाह ताला की कोई बात भी ना अबस नहीं है, यानी बेकार नहीं है, कि ऐसे ही बस कहानियां सुनाते कहें क्यों क्यों, अल्लाह ताला कोई काम फजूल नहीं करता। तो जो यहाँ पे भी कहानियां, इनमें हमारे लिए बहुत बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे सबक हैं, अगर हम सबक लेना चाहें। वैसे तो पढ़ने को ये आयतें कोई भी मुश्किल आयात नहीं है जो आज के सबक की हैं, आप किसी भी तफसीर में से इनकी डिटेल आराम से पढ़ के और समझ सकते हो। इन्हें असल काम क्या है, उन्हीं आयात से अपने लिए लेना कि मुझे अमल की बात क्या मिलती है, मुझे क्या समझाया जा रहा है। असल में तो हमें समझाया जा रहा है ना, जिन्होंने कर दिया वो तो गुजरी बातें हो गई, अब उनका क्या करना। जैसे कुछ लोग कहते हैं लो जी कुरान में तो पुराने लोगों की बातें हैं बस बताइए, और बेवकूफों तुम्हें ये नहीं पता कि वो बातें बता के असल में तुम्हें समझाया गया है, कोई बात है जो इंसान को बताई जाती है कि तुम ऐसा करना या तुम ऐसा ना करना। देखते हैं आज की कहानी में हमें क्या सबक मिलते हैं। कहानी शुरू होती है यूसुफ अलैहिस्सलाम से, जी यूसुफ अलैहिस्सलाम से। अब वो पता है यूसुफ अलैहिस्सलाम का, अक्सर लोग इनकी कहानी जानते हैं कि किस तरह से वो कुएं में डाले गए, फिर उसके बाद बाजार में बिके, अजीज मिस्र के पास आए, उसके बाद जेल में गए, और वहां से फिर उनको हुकूमत मिली। और आपको ये भी पता होगा कि कहत आया था, और उन्होंने कहत के बारे में बताया था कि इसको किस तरह से सॉल्व करना है इस प्रॉब्लम को। और जब कहत पढ़ा तो उस जमाने में ना बहुत दूर दूर तक कहत पड़ जाते थे, तो जब कहत पड़ा तो आसपास के सारे इलाके और ये सब कहत के उसमें आ गए, और ये मिस्र में थे यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो अब ये बहुत बड़े मिनिस्टर थे वहां के, इन्होंने तो अपने जो मुल्क की सारी चीजों का पहले ही इंतजाम कर लिया था, जैसे सूरह यूसुफ में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, और जिन लोगों को पता है इस बारे में तो उनको पता है कितनी उन्होंने विजडम के साथ, हिकमत के साथ सारा इंतजाम किया हुआ था। तो उनके मुल्क में तो कहत के वो इफेक्ट्स नहीं थे कि उन्होंने इंतजाम किया हुआ था, मगर आसपास के इलाकों से लोग आते थे, और किस तरह से वो इनसे आके कुछ ना कुछ मांगते थे, लेते थे, तो उनको सब तरफ कहत था। तो इनकी फैमिली कहाँ रह गई थी, पैलेस्टाइन में, ठीक है, अब मैं आज की टर्म्स यूज कर रही हूँ, ठीक है, उस वक्त की अगर टर्म्स यूज करूंगी तो आपको नहीं समझ आएगी कि हम किधर की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब ये इजिप्ट में आप मैप से जरा देखिएगा, तो वहां से इनके भाई लेने के लिए आए थे, गल्ला, और उसके बाद फिर आपको ये स्टोरी पता होगी, फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको फिर अपने पास ही रख लिया था। अच्छा, अब थोड़ी सी इस बात को सोचें, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे किसी और मुल्क के हैं, लेकिन हम कहीं और मुल्क में आके बैठे हैं, ठीक है? तो इसी तरह वो बिलोंग नहीं करते थे इजिप्ट को, लेकिन वो इजिप्ट में समझ लें एज इमिग्रेंट थे, मगर एज इमिग्रेंट ऐसे नहीं थे कि कोई थर्ड रेटेड इमिग्रेंट हो, बल्कि चूंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत बड़े मिनिस्टर थे और उनका बहुत बड़ा एहसान था उस मुल्क के ऊपर, बहुत बड़े माने जाते थे वो वहां पे, क्योंकि उन्होंने ही उन लोगों को इस चीज की तदबीर बताई थी कि किस तरह से ये कहत से बचना, उन्होंने सारे इस चीज को कंट्रोल किया था। तो उनकी जाहिर है उनके पास वहां पे पावर थी, उन्होंने अपनी सारी जो फैमिली थी, अपने भाई थे जितने भी 11 भाई जो बाकी रह गए थे, अपने बाप और सबको अब सिटीजनशिप उनको मिल गई है इजिप्ट की, ठीक है? अब ये बातें मेरे ख्याल अब आसान होंगी समझनी, अगर तफसीर में पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको इस तरह नहीं समझ आए, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में आज की टर्मिनोलॉजीज में बता रही हूँ। तो अब उनको सिटीजनशिप मिल गई। अब मैंने आपको बताया था कि इसराइल किसका लकब था, याकूब अलैहिस्सलाम का, ठीक है? तो ये याकूब अलैहिस्सलाम की फैमिली है ना, उनके 12 बेटे थे जिनमें एक यूसुफ अलैहिस्सलाम है, बिन्यामीन है, और बाकी 10 भाई और उनके थे। तो ये सारे के सारे अब कहाँ सेटल हो गए, मिस्र में। बड़ा इनका स्टेटस था, जाहिर है बहुत कुछ उनको उन्होंने दिया वहां पे, क्योंकि ये किसके रिश्तेदार थे, बहुत बड़े मिनिस्टर के रिश्तेदार थे जिनका बड़ा एहसान था। अच्छा, अब वहां पे ये फले फूले, वहां पे ये रह रहे हैं, बड़ा अच्छा इनका दौर गुजर रहा है। लेकिन जैसे कि टाइम गुजरता जाता है, जाहिर है इनकी पॉपुलेशन भी बढ़ी, और वहां पे फिर किसका कब्जा हो गया, फिरौन का। फिरौन एक आदमी का नाम नहीं है, एक्चुअली फिरौन जो है ये मिस्र के बादशाहों को कहा जाता था। तो इसकी जो किबती कौम थी, इन्होंने टेक ओवर कर लिया। फराइना, ऐसे फिरौन की जमा फराइना, यानी फराइना बहुत से आए हैं। फिरौन जो है वो इसका मीनिंग कहा जाता है कि ये यानी सूरज देवता, यानी वो लोग कहते थे कि ये खुदा का अवतार है, खुदा ही जमीन पे आया हुआ इस शक्ल में, अल्लाह ताला माफ फरमाए, यानी इतने बिगड़े हुए इनके अकीदे थे। तो जैसे दूसरे मुल्कों में हम जैसे अपने यहाँ पे कहते हैं प्रेसिडेंट, या हम कहते हैं प्राइम मिनिस्टर, या हम इस तरह से कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है ना जो हेड होता है उसके लिए, इसी तरह इजिप्ट के जो बादशाह थे उनके लिए था नाम क्या, फिरौन। तो हर एक को फिरौन ही कहते थे, ठीक है? अच्छा, अब क्या यहां से आगे स्टोरी क्या चलती है कि अब सेंचुरीज गुजरती गई, साल हर साल गुजरते चले गए, वो यहीं पे अब बस चुके हैं जो जिनको हम कहेंगे बनी इसराइल, ठीक है? क्योंकि इसराइल की औलाद, यानी जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के सारे भाई हैं, उनके बच्चे, उनके आगे बच्चे, तो बहुत फैल गए। और आपको पता है जिस वक्त की कोई कौम बहुत फैल रही होती है ना, तो जो नेटिव्स होते हैं, जो उस मुल्क के रहने वाले होते हैं, उनको ये खदशा होने लगता है कि अब ये इतने ही ना बढ़ जाए कि वह हमारे ऊपर ही टेक ओवर कर लें, तो फिर क्या होगा हमारा। कहा जाता है इस वजह से, बाज कहते हैं कि ये वजह थी कि फिरौन ने इनको इनके बच्चों को मारना शुरू कर दिया। और एक रिजेंटमेंट होती है ना किसी भी जगह पर, जहाँ पे एक नेटिव्स होते हैं और एक इमिग्रेंट्स होते हैं। अब इमिग्रेंट चाहे अपने रंग की वजह से या अपनी जुबान की वजह से, वो हमेशा एक अलग ही देखे जाते हैं, वो कभी ब्लेंडिंग नहीं हो पाते। अब जिस वक्त ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं, तो अब आहिस्ता आहिस्ता जो वहां के रहने वाले थे उनके दिलों में इनके लिए आ गई कि ये देखो हमारे यहाँ पे इतने पल बढ़ रहे हैं और इतने ज्यादा होते जा रहे हैं, इनकी पॉपुलेशन इतनी बढ़ती जा रही है। आहिस्ता आहिस्ता उनको वो जॉब्स और वो अपॉर्चुनिटीज जो दूसरों के पास थी वो देनी खत्म कर दी गई, और कोई भी व्हाइट कॉलर जॉब इनको नहीं मिलती थी। नतीजा क्या हुआ कि ये बस मजदूरियां करने और मुशक्कत करने पर मजबूर हो गए, इनको बस नौकर बना लिया गया, गुलाम बना लिया गया, इनको इतना यानी दबाया गया। जैसे कि आप इस वक्त दुनिया के हालात देखें तो ये बात समझनी कोई भी मुश्किल नहीं। और पढ़ते आप हम इस तरफ आते हैं आयात की तरफ, आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड समझ आई कि क्या सिनेरियो था। और जो भी कहीं किसी मुल्क में इमिग्रेंट्स हैं उनको ये बात अच्छी तरह समझ आती होगी कि क्या फीलिंग्स होती हैं जब आप कहीं इमिग्रेंट होते हैं किसी मुल्क में। देखते हैं आयत नंबर 49 से, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ नजैनाकुम मिन आलि फिरऔना, याद करो जब हमने तुमको निजात दी आले फिरौन से। अब ये किसको कहा जा रहा है, याद करो हमने तुमको निजात दी, हमें तो नहीं निजात दी गई, किसको ये एड्रेस किसको किया जा रहा है कुरान में? यहूदे मदीना को। मदीना में ये आयात उतर रही हैं, जस्ट उस जमाने में जाके देखें कि अभी ये आयात उतर रही हैं और उनको सुनाई जा रही हैं कि देखो हमने तुमको निजात दी, तो उनको तो नहीं निजात दी थी आले फिरौन से। फिरौन तो बहुत जमानों पहले गुजर चुका था, 2000 साल तकरीबन गुजर चुके थे, 2000 साल से भी ज्यादा का जमाना। तो कहा जा रहा नजैनाकुम, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि जो एहसान हमारे आबाओ अजदाद पे होता है वो एक्चुअली हमारे ऊपर ही एहसान होता है। आपने कभी दुआएं पढ़ी हैं, कुरानी दुआएं किसी किताब में? उनमें एक दुआ सुलेमान अलैहिस्सलाम की भी है, रब्बी औज़ेनी अन अशकुरा नियमतक अल्लती अन अमता अलैया व अला वालिदैया, मुझे तौफीक दे कि मैं शुक्र अदा करूं उस नेमत का जो तूने मुझ पे किया और मेरे वालदेन पे किया। आपके वालदेन, आपके आबाओ अजदाद पर अल्लाह की जो नेमतें होती हैं उसका समर कौन उठाता है, उसका फल कौन खाता है? मसलन किसी के वालदेन हैं, अगर वो बड़े मालदार हैं या उसके आबाओ अजदाद बड़े मालदार थे, तो उसका फल किसने उठा, नतीजा किसको मिला, फायदा किसको हुआ? उसकी औलाद को। एक वालदेन थे बहुत इल्म वाले थे, बहुत दीनदार थे, उन्होंने अपनी औलाद को दीन की तरफ लगाया। तो आबाओ अजदाद पे जो अल्लाह के एहसानात होते हैं उनका फल डायरेक्ट औलाद और नस्लों तक पहुंचता है। तो इसलिए उनको कहा गया, आज तुम इसीलिए सरवाइव कर रहे हो, आज तुम इसीलिए हो कि तुम्हें अल्लाह ने निजात दी थी, यानी तुम्हारे आबाओ अजदाद को, तो तुम्हारे ऊपर ही एहसान है ना। तो नजैनाकुम, तुम्हें दी निजात, याद करो कि किस तरह तुम्हें निजात दी थी आले फिराउन से। आले फिराउन कौन है? मैंने आपको बताया, फिराउन की जितनी भी कौम, उसके लश्करी फौजी, उसके वजीर मुशीर, उसकी फैमिली, उसके वो सब आल में है, जो उसके अकीदतमंद, उसके जितने उसके साथ उसके साथी थे। ठीक है, तो यानी वो किबतियों से, वो किबती कौम कहलाती थी, ये बनी इसराइल है, और वो कौन है? किबती, काफ के साथ, बै तो। ठीक है, यसूमूनकुम, वो तकलीफ देते थे तुमको, क्या करते थे? सू अल अजाब, बुरा अजाब देते थे। क्या करते थे बुरा अजाब? मैंने आपको जैसे बताया कि कोई अपॉर्चुनिटी इनके पास नहीं थी, सारी वो इनको लेबर वर्क इनसे कराते थे, बड़ी बड़ी इमारतें तामीर कराते थे, ज्यादा पे नहीं करते थे, इनकी हालत बहुत बुरी थी, ये स्लेव्स थे वहां पे, स्लेव बना लिया हुआ था इनको। अच्छा, अब आप बताएंगे मुझे कि ये कौन थे लोग, बनी इसराइल कौन थे जिनको स्लेव्स बनाया गया था, गुलाम बनाया गया था, ये कौन थे? जिसको हम आज कहते हैं ना, किसी फैमिली को पता चलता है, हमें जेन्युइनली, ऐसे ही नाम नहीं रखा हुआ, जेन्युइनली किसी का पता चलता है कि ये सैयद जादे, तो कितनी रिस्पेक्ट होती है। समझ लें, बनी इसराइल सैयद जादे थे, पैगंबरों की औलाद थे वो, मामूली बात तो नहीं है। यानी हम अपने में से किसी, कोई दावा नहीं कर सकता कि हम पैगंबरों की औलाद में से, अनलेस के कोई जेन्युइन सैयद हो। लेकिन वो क्या थे कि वो पीछे जैसे जाके याकूब अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ये इनके आबाओ अजदाद थे। ठीक है, तो ये उन्हीं याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटों से ही चल रहे थे ना, और अब इतने ज्यादा हो गए थे कि 6 लाख इनकी पॉपुलेशन थी। अब क्या था कि जब इतनी इनकी पॉपुलेशन बढ़ गई, एक तो वो उनको बहुत उनसे ऐसे काम लेते थे जो कि लो ग्रेड वर्क था और जिसमें बहुत मुशक्कत थी और इनको कुछ ज्यादा नहीं पे करते थे। और फिर दूसरा उसने क्या काम शुरू किया, जैसे आज के दौर के अंदर कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स कायम कर दिए जाते हैं, वहां पे लोगों को ले जाके बंद कर दिया जाता है सिर्फ उनके तीन मजहब की वजह से, उनको सताने की वजह से, उनके ऊपर टॉर्चर की वजह से। तो उसके टॉर्चर का क्या तरीका था, उसने कहा इनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, इनके लोग मारना शुरू कर दो। युदब्बिहूना अबनाअकुम, ऐसा होता था कि जो औरत प्रेग्नेंट होती थी उनको पता चल जाता था, उसके ऊपर गार्ड्स मुकर्रर हो जाते थे, वो दाई वगैरह को सबको कह दिया जाता था कि जब बच्चा पैदा होगा उसी वक्त उसको जिबा कर दिया जाता था। अब ना युजब्बी होना में मैंने आपको बताया कि शिद्दत है, दो बातें हैं इसके अंदर, एक क्या बार बार करना वही काम, दूसरा क्या शिद्दत उसके अंदर, यानी जबहा एक आम है, एक जबहा है, यानी उसको बहुत ही बुरे तरीके के साथ करना, तो तकलीफ देके। तो वो इन बेबीज को सोचें कि वो जिबा करते थे, स्लॉटर करते थे। आज हम सोचते हैं ना दुनिया में कितना जुल्म है, कितना जुल्म है, ये ना सोचें कि ये आज पहला दिन है, कि ये कोई पहला दौर आया जिसमें कोई जुल्म हो रहा है। तारीख उठा के देखिए, जुल्म की दास्तानी ऐसी ऐसी है कि इंसान की रूह कांप जाती है। एक एक इन्फेंट को इंसान देख के तड़प जाता है, अगर वो उसको कोई ऐसी तकलीफ हो रही है, उसको कोई मार रहा है या उसको कोई और उठा के फेंक रहा है, तो कितनी तकलीफ होती है देखा नहीं जाता। वो कहां जिबा करना, और एक को नहीं, कहा जाता है बाज रिवायत में आता है 12,000 बच्चे उसने कत्ल किए, और बाज जगह आता है 90,000, 90,000 बेबीज को जिबा करना कोई मामूली बात है। और इससे आप ये भी समझ सकते होंगे कि इन बनी इसराइल की बेचारगी और इनकी लाचारी और इनकी बेबसी का क्या आलम होगा कि इनके साथ ये हो रहा है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकते, बस देख रहे हैं। यानी कोई करने देगा अपने बच्चे को ऐसे, लेकिन सोचिए उस वक्त की अथॉरिटीज के सामने, जो लोकल अथॉरिटीज थी, मसलन कोई पुलिस है आज के जमाने में, इसको पुलिस क्या है, उस जमाने में उसकी जो पुलिस थी वो आके इस तरह से ले जाती थी, वो किसी को मिजाल नहीं थी कि कुछ करे। जैसे आज मुसलमान है, इतने बेबस हैं कि उनके सामने कुछ भी हो जाएगा ना तो बस तस्वीर बने, तमाशा देखते रहेंगे और बस उनके सामने होता चला जाएगा। उनकी कोई से नहीं है, उनके कोई परसाने हाल नहीं है, उनका कोई कोई देखने वाला नहीं। ये इतनी बेबसी ही थी इसी तरह बनी इसराइल की। वह यस्तहयूना निसाअकुम, अब यहां पे होना तो चाहिए था वह यस्तहयूना बनातकुम, तुम्हारी बेटियों को छोड़ देते थे, लेकिन कहा गया निसाअकुम, निसा एक फुल ग्रोन औरत को कहते हैं, बेटियां होती तो ये कोई जुर्म तो नहीं होना था ना कि बेटियों को जिंदा छोड़ देते थे, ये तो एक अच्छी बात है कि चलो किसी को तो छोड़ा, लेकिन कहा गया यस्तहयूना निसाअकुम, ये क्यों कहा गया सोचा आपने, ये बेटियां क्यों नहीं आया। देखिए बेटे की उलट में बेटी आनी चाहिए थी ना, उनको जिबा करते थे, बेटियों को छोड़ देते थे, लेकिन आया निसा को, सोचे आप खुद भी सोचा करें। जब किसी की औरत की बात आती है ना तो आदमी के लिए बड़ी गैरत की बात हो जाती है, यानी औरतों को जिंदा छोड़ते थे ताकि उनको अपनी लौंडियां बनाए, उनसे खिदमतें ले, ठीक है। और सोचे कौन लौंडियां बन रही हैं, कौन रोनियां बन रही हूँ, ये जो पैगंबरों की औलाद है। और उनको कैसे, उनकी वो कोई इज्जत नहीं है उनकी, यानी कुछ भी ना, उनके पास जीने का हक है ना उनकी इज्जतें महफूज हैं, दो ही चीजें होती हैं ना, माल तो है ही नहीं उनके पास, तो कोई उनकी कैसी जॉब्स उनको दी हुई, और जान और इज्जत ये बहुत बड़ी चीज होती है। तो नस्ल कुशी, और मैंने आपको बताया ना बार बार करता था, यानी इसका मतलब हर एक साल छोड़ के, एक साल छोड़ के इस तरह करता, बार बार उसका ये काम था। और वयस्ताहयूना निसा को, अब तुम औरतों को तुम्हारी, अब ये भी एक किसी कौम के लिए इससे बढ़ के क्या बात हो सकती है कि उसकी औरतों को ले जाया जाए और वो जो मर्जी करें और लौंडियां बनाए उनको। कितनी बड़ी एक कौम के लिए ये कितनी बड़ी एक गैरत की बात होती, लेकिन फिर भी वो बेबस थे, कुछ नहीं कर सकते थे। और इसी से आपको पता चल रहा होगा कि उनकी हालत कितनी गिर चुकी थी। पस्ती का क्या आलम होगा, सोची कहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था और कहाँ तक वो पहुंच गए थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मैंने आपको बताई थी वो हदीस, कि तुम पर भी वो जमाना वैसा ही सब कुछ गुजरेगा जैसे कि पिछली कौमों पे गुजरा। आज देखें, औरतें लूट रही हो, बच्चों को मारा जा रहा हो, उनके ऊपर किस किस तरह के टॉर्चर किए जा रहे हो, लेकिन मुसलमान ही है जो खामोश है, खामोश तमाशाई बनेंगे। वफी ज़ालिकुम बला उम्मिर रब्बिकुम आदीम, इसमें तुम्हारे लिए बहुत बड़ी आजमाइश थी तुम्हारे रब की तरफ से, बहुत बड़ी आजमाइश थी। जाहिर है ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। क्यों था ये? बनी इसराइल को होश में लाने के लिए। तुम्हें अल्लाह ने किस चीज के लिए चुना हुआ है? तुम पैगंबरों की औलाद हो, तुमने करना क्या था? हाँ, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो बुतों को तोड़ने वाले थे, जिन्होंने क्या क्या कुर्बानियां दी तौहीद के लिए, तुम किधर पहुंच गए हो? तुम किसकी औलाद हो? इसहाक अलैहिस्सलाम की, याकूब अलैहिस्सलाम की? तुम्हारा हाल क्या हो गया? तो इसमें बड़ी आजमाइश थी। और मुफस्सरीन ये भी कहते हैं कि आजमाइश से यहां पे मुराद ये भी है, हो सकती है कि नजैनाकुम आजमाइश, निजात देना, जो हमने तुम्हें निजात दी इसमें तुम्हारे लिए बड़ी आजमाइश थी। इसमें क्या आजमाइश हो सकती? अच्छी चीजों में आजमाइश होती है? हम कहते नहीं, अच्छी चीजों में तो कोई, वो तो बुरी चीजों में आजमाइश, हम तो टेस्ट समझते ही नहीं ना। नेमत मिलने को तो हम टेस्ट ही नहीं समझते, हालांकि नेमत में भी टेस्ट है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि बला जो होती है वो हसनात में भी होती, सैयाद में भी होती, भलाइयों में भी बुराइयों में भी होती। तो ऐसा नहीं है कि निजात मिलना इसमें कोई आजमाइश नहीं होगी, इसमें भी आजमाइश। आजमाइश क्या होती है? जब इंसान को कोई नेमत मिले, कोई अच्छी चीज मिले, आजमाइश ये होती है कि इंसान अब पता चले कि कितना शुक्र अदा करता है और इसमें कितनी आजजी रहती है, लोगों को हकारत से तो नहीं देखता अब। ये आजमाइश होती है नेमत में, लेकिन इंसान को ना नेमत पा के अक्सर समझ नहीं आती कि ये मेरी आजमाइश, ये मेरा टेस्ट है। ठीक, अच्छा, अब देखें कितनी बड़ा अल्लाह ताला का करम हुआ कि अल्लाह ताला ने इनको निजात दिया। आप थोड़ा सा इमेजिन करके देखें किसी भी इस वक्त के दुनिया के ऐसे एरिया को जहां पे मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा हो, कितनी रूह कांपती है। अच्छा, उसको सोचेंगे ना तो फिर आपको समझ में आएगा, पैलेस्टाइन को सोचने, कश्मीर को सोचने, रोहिंग्या को सोचने, चाइना के मुसलमान, कहीं को भी आप सोचें, और फिर सोचें कि बनी इसराइल उस किस्म की चीजों से गुजर रहे थे और साल हा साल गुजरते ही जा रहे थे। अल्लाह ताला ने फरमाया हमने निजात दी, और बला भी किसकी तरफ से थी? आजमाइश भी ये किसकी तरफ से थी? मेरे रब्बी को, तुम्हारे रब की तरफ से। टेस्ट क्या, किस लिए लिया जाता है? टेस्ट तो हमें बड़ा बुरा लगता है, लेकिन टेस्ट किस लिए लिया जाता है? इंसान को आजमाने के लिए ना, कितना इसके अंदर दम खम, उसको प्रमोट करने के लिए आगे। ठीक है, तो यही टेस्ट का मकसद होता है। टेस्ट कभी इसलिए नहीं लिया जाता कि लोग फेल हो जाएं और बड़ा मजा आ रहा है, लोगों को कुछ सिखाने के लिए, कुछ समझाने के लिए लिया जाता है, कुछ किसी चीज के लिए तैयार करने के लिए लिया जाता है। अब मेडिकल में एक बच्चे का टेस्ट लिया जा रहा है कि वो डॉक्टर बन जाए, ठीक है ना? तो ये इस तरह से समझे आप कि इसलिए उनका टेस्ट ली, उनको टेस्ट में डाला अल्लाह ताला ने, और ये लेकिन बहुत बड़ा टेस्ट था। और कौमों पर ऐसे टेस्ट आते रहेंगे, बात ये होती है कि उस टेस्ट से सीखते क्या हैं। वइذ फरकना बिकुमुल बहरा, और जब फाड़ा हमने तुम्हारे लिए समंदर को, फअंजैनाकुम, फिर निजात दी हमने तुमको, वअग्रकना, और गर्क कर दिया आल फिरऔन, आले फिरऔन को, वअंतुम तंजुरून, और तुम देख रहे थे अपनी आंखों से। अब क्या हुआ, अब ये जो सारा मैंने आपको बताया कि ऐसे उनके साथ जुल्मों सितम हो रहा था, अब आगे आप बहुत डिटेल में इस स्टोरी को बार बार कुरान पाक में पढ़ते रहेंगे कि फिर मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मबूस किया, फिरौन की तरफ भेजा, उन्होंने आके फिरौन से क्या कहा, दो चीजों की डिमांड की थी मूसा अलैहिस्सलाम ने। नंबर वन, बनी इसराइल को मेरे साथ भेज, इसको नंबर टू कह लें। सबसे पहले तो उन्होंने तौहीद का उसको पैगाम दिया था कि एक अल्लाह पर ईमान ले, और नंबर टू क्या, बनी इसराइल को मेरे साथ भेज दो, लेके वापस जाना चाहते थे बनी इसराइल को, अल्लाह की तरफ से इनको हुक्म था कि ये जाके कहें, और बनी इसराइल को वापस कहाँ लेकर जाएं, इनके कंट्री जहां से वो आए थे, बैतुल मकदस, यरूशलेम, वापस ले जाएं उनको ना। आज भी यहूदी उसको अपना समझते हैं ना, कि वो हमारा असल ओरिजन है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जब फिरौन नहीं माना, और बहुत बहुत साल उसको समझाने के बावजूद वो नहीं माना, तो आखिरकार अल्लाह ताला की तरफ से अब ये मूसा अलैहिस्सलाम को वही आई कि ए मूसा, आप रातों रात बनी इसराइल को लेकर निकल चले। ठीक, अब बनी इसराइल को कम तो नहीं थे, 6 लाख लोग थे, आसान तो नहीं था 6 लाख लोगों को लेकर निकलना। अब यहाँ से कहीं जा रहे हो और दो चार गाड़ियां भी आपके साथ हों तो कोई कहीं लॉस्ट हो जाता है, कोई कुछ हो जाता है, तो आसान नहीं था। तो एनी हाउ मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर निकले। जब निकले तो हाँ, आप क्या सोचते हैं कि उनको नहीं पता चला होगा कि इतने लोग निकल के जा रहे हैं, तो उनको नहीं समझ आई होगी। उनको समझ आई, लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा किया कि उनके घर के हर जो बड़ा बेटा था वो फौत हो गया, हर एक के घर में किबतियों के। तो अब वो तो उसके अंदर लग गए, और इतने में ये लोग निकल गए। लेकिन इतनी बड़ी, जैसे मैंने आपको बताया कि इतनी बड़ी तादाद में अगर लोग निकलते हैं तो वो तो स्लो होगा ना, वो तो काफला। जब तक उनको होश आया तो उन्होंने कहा फिरौन ने कि अब इनको पकड़ो और एक एक को कत्ल कर दो, खत्म कर दो इनको। और वो खुद निकल पड़ा अपने साथियों को, अपनी फौज को लेकर सारी को निकल पड़ा। अब वो तो घोड़ों पे हैं और वो तो ट्रेंड है, और इनमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, सब तो सारे तरह के लोग हैं। तो वो तो एक काफिला जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। अब वो कितनी दूर जा सकते थे। अल्लाह ताला ने देखें क्या किया कि ये भी सारी जो मुजजात है ना अल्लाह ताला के, अल्लाह ने जो दिखाए हैं दुनिया में, ये भी इंसान की आंखें खोलने के लिए काफी हैं। और इस बातों को सब मानते हैं, वो ज्यूज भी मानते हैं। इसके ऊपर पूरी इन्होंने एक मूवी भी बनाई हुई है जिसपे उन्होंने दिखाया है कि किस तरह से वो लोग निकले और कैसे वो जा रहे हैं, चल रहे हैं, और कितनी मुश्किलों से, और पीछे वो तो उसके फौज है पूरी, वो तो धड़ाधड़ घोड़ों पे आ रही है। अब हुआ ये कि ऐसी जगह पर पहुंच गए बनी इसराइल जहां पर आगे समंदर था, और पीछे देखा तो वहां से वो आ रहे हैं फिरौन के पूरे लश्कर। कितनी बड़ी एक मुश्किल की बात थी इनके लिए कि अब तो हम फंस गए, अब हमारा क्या बनेगा, ये तो बड़ा मुश्किल हो गया। आप देखें, वो जिनसे बचने के लिए जा रहे थे वो तो अब सर पे खड़े हो गए, और अब तो वो इतना मारेंगे क्योंकि अब तो वो गुस्से में है कि तुम्हारी मिजाल कैसे हुई कि यहां से तुम निकले हो। तो उस वक्त अब मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हुए हैं सामने समंदर, पीछे वो जिसको कहते हैं बिटवीन द डेवल एंड द डेड सी। अब तो मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हुए हैं, तो लोगों ने उनको कहा इन्ना लमुद्रकून कुरान में आता है। तो वो कहने लगे हम तो पकड़े गए। कईयों ने कहा मूसा हमें यहां पे किधर ले आए, हमें मरवा दिया तुमने, ये क्या किया? मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हैं और क्या फरमा रहे हैं, कल्ला इन्ना माया रब्बी सयहदीनी, हरगिज नहीं, मेरे साथ मेरा रब है, वो जरूर मुझे अनकरीब रास्ता दिखाएगा, वो जल्दी मुझे रास्ता दिखाएगा, सयाह दीनी, वो मुझे रास्ता दिखाएगा, मेरा रब मेरे साथ है। और देखते हैं मोमिन का ईमान कैसा होता है कि आजमाइश जितनी बड़ी होती है, मुसीबत जितनी ही ज्यादा सख्त होती है, मुश्किलात जितनी ज्यादा आती हैं, उसका अल्लाह के ऊपर भरोसा भी उतना ही बढ़ जाता है। अक्सर हमारे साथ उलट होता है ना, मुश्किल ज्यादा होती जाती है तो हमारा ईमान क्या होता है, बजाय बढ़ने के वो तो घटना शुरू हो जाता है, डगमगाने लगता है, बल्कि बहुत से लोग तो मायूस हो जाते हैं जैसे जैसे मुश्किल बढ़ती है, मसला बढ़ता है, कहते हैं हाय ये तो मसला खत्म ही नहीं हो रहा, बस अब कभी नहीं खत्म होना, बस अब तो हमारा कभी नहीं हालात सही होने, बस अब तो कुछ नहीं होगा, बस अब तो हमने दुआएं भी मांग के देख ली, बस अब तो, यानी बजाय ईमान बढ़ने के कि जरूर अल्लाह करेगा मेरे लिए, जरूर अल्लाह अल्लाह मेरे साथ है, ये नहीं होता, उल्टा अल्लाह को ही भूल जाते हैं, चलो छोड़ो अब अल्लाह से तो बात नहीं बनी, अब चलो आ फलां मिजार के चलते हैं, चलो आ फलाने बाबे छा के चलते हैं, फलो वो फलां है वो जो आमिल है वो कर देता है कुछ जादू कुछ, वो 24 घंटे में आपका काम हो जाएगा, चलो उनकी तरफ चलते हैं। ये वाली बात कितनी जबरदस्त है, कल्ला जो तुम बात कह रहे हो ना, हरगिज ऐसा नहीं है, इन्ना माया रब्बी सयहदीनी, जब इंसान मुश्किल में हो तो मूसा अलैहिस्सलाम के इन अल्फाज को याद कर ले कि इन्ना माया रब्बी सयहदीनी, ये भरोसा है, फुल फुल ऑफ ट्रस्ट है, ये अल्फाज इनमें उनका जो अल्लाह के ऊपर एक तवक्कल है ना वो झलक रहा है, उनको फिक्र नहीं है, वो इस तरह नहीं घबरा रहे जैसे लोग घबरा रहे अब क्या होगा, अब तो बस गए हम, अब वो अल्लाह ताला कहाँ गया, हाँ भूल गए कि एक अल्लाह की जात भी तो है, नहीं अब तो हम बस पकड़ेगा है, अब हमारा कुछ नहीं होगा, ये वो मीडियोकर लोग थे ना, और आज हम भी वैसे ही हैं, बिलीव मी ऐसे ही हैं, बस हमारे गए हम लूटे गए, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। हाँ जब इंसान अल्लाह ताला को के ऊपर भरोसा नहीं रखता हो, या अल्लाह ताला को नहीं समझता कि वो मुश्किल कुशा है, वो हाजत रवा है, तो तब उसकी यही बातें होती हैं कि अब कुछ नहीं सही हो सकता। उस वक्त जैसे मूसा अलैहिस्सलाम का भरोसा था, इस तरह हमें हर अपनी मुश्किल के अंदर भरोसा करना है अल्लाह पर, और अल्लाह ताला हमें दे ऐसे। फिर क्या हुआ, अल्लाह ताला ने वही की मूसा अलैहि सलाम पर, ए मूसा अपना आसा मारो, आसा आसा से भी कभी कुछ होता है, आसा मारो, आसा तो एक लाठी है, लेकिन अल्लाह ताला का क्या हुक्म हुआ, अपना आसा मारो। मूसा अलैहि सलाम ने ये नहीं पूछा अल्लाह आसा से क्या होगा, पैनिक में इस वक्त हमारे पीछे वो है, हम आगे जाते हैं तब मरते हैं, समुंदर में डूब जाएंगे, वो खड़े रहते हैं तो वो आके हमारी जान ले लेंगे, आसा से क्या होना है, नहीं उन्होंने ये सवाल नहीं किया, समझे ना आप बात, इससे क्या होगा उससे क्या हो जाएगा, हमें तो फौरन पहले होता है इससे क्या ना, उन्होंने आसा मारा और क्या हुआ, वो समंदर ऐसे फटा कि दोनों तरफ जैसे पानी के पहाड़ खड़े हो गए और बीच में रास्ता बन गया, अल्लाह ने हवाएं चला दी, वो रास्ता भी खुश्क हो गया ताकि चल सके, वरना तो आप ऐसी जमीन के ऊपर चल ही नहीं सकते, पैर ही अंदर धंस जाए, और पानी ऐसे खड़ा हुआ दोनों साइडों पे जैसे ऊंची ऊंची चट्टानें, ऐसा कभी इस जमीन ने ना पहले कभी देखा ना कभी देखेगी, ऐसा कभी नहीं हुआ। और देखें अब आप क्या कहते हैं कि आसा से ऐसा हुआ, तो जाएं फिर हम भी ऐसे ही मारते हैं, तो जिस आप एक छोड़ के लाखों मार ले तो कोई समंदर फटेगा नहीं, फिर वो क्या हुआ, इसलिए कि जब अल्लाह ने करना हो तो फिर वो आसा को यूज करके या किसी भी चीज को सबब बना के कोई भी काम कर सकता है, वो एक जर्रे से भी काम ले सकता है, वो एक लाठी से भी काम, कुछ किसी चीज को भी, क्योंकि कुदरत तो अल्लाह की है ना, असा में थोड़ी ताकत है, असा में ताकत नहीं है, उस कैन उस लाठी के अंदर ताकत थोड़ी ही है, अल्लाह की कुदरत से होना होता है। तो भरोसा आसा पे नहीं, भरोसा सबब पे नहीं, भरोसा अल्लाह पर। इससे हमें क्या सबक मिला? सबक ये मिला, नंबर वन, कि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, असा मारो, तो असा मारने के पहले ही अल्लाह ताला कह देते मूसा तुम दुआ करो अल्लाह से, या दुआ की भी जरूरत नहीं, अल्लाह वैसे ही फाड़ देता। इस कहने में क्या हिकमत थी? हमें सिखाना था कि असबाब इख्तियार करो, अल्लाह मदद करेगा, लेकिन ये याद रखना कि जो सबब है वो कोई कुदरत नहीं रखता, करना अल्लाह नहीं है। आप इलाज कराते हैं, आप कहते हैं मैं डॉक्टर, ये मसीहा है, अस्तग़फिरुल्लाह। कोई लोगों ने तो यहां तक यानी कह दिया डॉक्टर दो जमीन पे अल्लाह का अवतार है, वो भाई डॉक्टर के हाथ में नहीं है, आप जाओ इलाज करो, लेकिन किसने करना, किसने है शिफा, किसने देनी, अल्लाह ने। आप कोई भी अपने काम के लिए हाथ पैर मारो, दौड़ भाग करो, लेकिन उस हाथ पैर मारने को ये ना सोचो कि मैं फलां के पास गया हूं अब तो मेरा काम हो ही जाएगा, नहीं, वो फलां नहीं कर सकता, करना अल्लाह नहीं है। और यही भरोसा तो नहीं आता हमें, या तो हम बिल्कुल ही हाथ पैर तोड़ के बैठ जाते हैं घर में, बस अल्लाह ने करना है, हमने क्या करना है, उस उसकी जब होगी मर्जी तो कर देगा, मैंने ही कुछ नहीं करना, या तो ये हमारी अप्रोच हो जाती। दूसरी एक्सट्रीम पे चले जाए तो सारा भरोसा असबाब पे है, बजी फलाने को कहलवा दिया, बजी फला कॉन्टेक्ट हमने यूज किया है, बजी अब तो काम हो ही जाएगा, अब तो मैंने फलाने वजीर के साथ बात कर ली, अब तो फला डॉक्टर ये केस ले रहा है, अब फला वकील के पास मैं चला गया, तो ये कर सकते हैं क्या? तो फिर हमारा वो भरोसा उनके ऊपर हो जाता। ये दोनों एक्सट्रीम्स हैं, दोनों पे ही नहीं जाना हमें, ठीक है? सबब इख्तियार करना है, लेकिन ये सोचना है हाँ अल्लाह तेरा हुक्म है, सबब इख्तियार करो, मैंने कर लिया, लेकिन अल्लाह करना तूने, अल्लाह मैं दवा खा रही हूं लेकिन अल्लाह इसमें शिफा तूने डालनी। अब वही दवाई आप खाते हैं, वही दवाई कोई और खाता है, एक को शिफा मिल जाती एक को नहीं मिलती, तो दवाई का तो कमाल नहीं है इसका मतलब, वरना तो हर एक को मिल जाती, तो वो तो शिफा डालने वाले की बात है ना, वो चाहे इतनी छोटी सी गोली, इस गोली को असा समझ ले, इस गोली के अंदर वो चाहे तो शिफा डाल दे चाहे तो ना डाले। मूसा अलैहिस्सलाम के असा से समुंदर फट गए, हमारे लाखों असाओं से कुछ नहीं होता, तो वो अल्लाह ने डालना है इसके अंदर कि ये कुदरत अल्लाह की है। हजरत मरियम जो थी, जब उनको पेन्स आ रही थी, डिलीवरी का टाइम था, तो उनसे क्या कहा गया, इस दरख्त को हिलाओ, खजूर के दरख्त, हम मुझे बताएं एक औरत पेन में है वो कितनी जोर से हिला देगी, वैसे ही वो लड़की थी यहां ऊपर से वो पेन में कितनी जोर से हिला लेंगी बताएं, लेकिन उनको कहा गया तुम हिलाओ और खजूरें टपकी, तो उनसे क्यों कराया गया कि तुम्हें पता चले कि सबब इख्तियार करो, ऊंट बांधो फिर अल्लाह पे भरोसा करो, समझ आएगी? अच्छा, अब ये कितनी बड़ी नेमत एक और याद दिलाई, अभी आप देखेंगे सारी नेमतें याद दिलाई जा रही हैं इनको, कि देखो अल्लाह ताला ने तुम्हारे पर कितने एहसानात किए, सोचते हो तुम्हें कैसे निजात दी आले फिरौन से, वो तो तुम्हारे साथ इतना बुरा करता था, तुम्हें कैसे, फिर समुंदर आगे था उसको फाड़ दिया, तुम्हें निजात दे दी, और फिर ये भी सिर्फ निजात नहीं दी, एक और भी नेमत याद दिलाई, वह अगरकना आला फिरौन, आले फिरौन को गर्क कर दिया, यानी तुम्हारी आंखों के सामने उनको गर्क किया, ताकि नंबर वन ये कि पता चल जाए कि हाँ भाई अब हमारा कोई दुश्मन नहीं, वरना तो धड़का ही लगा रहेगा, क्या पता कोई आगे खबर भी दे दे कि वो तो सारे मर गए हैं, अब नहीं क्या पता नहीं ऐसा हुआ हो। देखिए जब इंसान के दिल के अंदर किसी का खौफ होता है तो कोई जाके चाहे आके बता भी देना कि नहीं अब नहीं उन्होंने आना, फिर भी धड़का लगा रहे थे, पता नहीं क्या पता आ ही ना जाए, क्योंकि जाहिर है इनका बहुत रोब था उनके ऊपर, ये उनका टॉर्चर सह चुके थे, उनको पता था वो कितने जालिम है, और दूसरा अल्लाह ने इनके सीने ठंडे किए, ये वो लोग हैं जो तुम्हारे बच्चों को जिबा करते थे ना, देखो अल्लाह ने इनसे कैसा इंतकाम लिया। अब बनी इसराइल में अपनी तो कोई ताकत नहीं थी कि इनसे लड़ते, ना उनके पास कोई ऐसी चीजें थी कि इनका मुकाबला करते, लेकिन अल्लाह ने उनकी जगह पर देखो कैसे अल्लाह ताला ने उसको गर्क कर दिया। इनको ना लड़ना पड़ा ना इनको कोई मुकाबला करना पड़ा, अल्लाह ने बल्कि उसको गर्क करके दिखाया इनको। और क्या पता चलता है, समझ क्या आती है, जब हम भी कभी ऐसी मुश्किल में फंस जाए, पांच दफा जिंदगी में ऐसे हालात होते हैं कि वाकई जैसे बनी इसराइल के ऊपर आया कि पीछे फिरौन और आगे समंदर, ना समझ आती है किधर को जाएं, हर तरफ एक मायूसी सी घेरने लगती, हर तरफ से अंधेरा सा लगता है कि कहीं रास्ता नहीं है। उस वक्त सोचा करें कि अल्लाह है जो रास्ता निकालने वाला है, वो निकाल सकता है रास्ता, जबकि मुझे कोई रास्ता नजर ना आ रहा। वाकई नहीं नजर आ रहा था ना, क्या रास्ता नजर आ रहा था बनी इसराइल को, किधर भागते उस वक्त मुझे बताएं, कोई जगह थी? और इतनी बड़ी आर्मी पीछे आ रही है, और सोचे खौफ का आलम क्या होगा, और उस वक्त अल्लाह ने रास्ता कैसे निकाला। इसी तरह अल्लाह जिंदगियों में जब मुसीबतों के तूफान होते हैं, ऐसे ऐसे मसाइब के पहाड़ खड़े हो जाते हैं, अल्लाह उनमें रास्ते निकालता है, बशर्ते के इंसान अल्लाह पे भरोसा तो करके देखे। ये कह के को तो देखे, इन्नमा या रब्बी सजा दी, मेरे साथ मेरा रब है, वो मुझे जरूर राह दिखाएगा, ये भरोसा करके तो देखो। हम तो 4 दिन दुआएं करते हैं, 5वें दिन कहने लगते सुनी नहीं जाती मेरी, पता नहीं कब सुनी जाएगी, हाय हम तो इतने दिनों से मांग रहे हैं, हमारा तो नहीं काम हुआ। अब ये एक मूवी की तरह आपके जहन में सारी ये चलनी चाहिए, ये सारी आयात की आप अपने सामने विजुअलाइज कर रहे हो कि क्या हो रहा होगा, और सिर्फ इनको आयतों के तौर में ना पढ़े, एक जस्ट बी अ पार्ट ऑफ दैट, जो बनी इसराइल का पूरा वो क्या उसको कहेंगे, पूरी कौम चल रही थी, वो जो पूरा उनका नेशन था, समझे कि आई एम अ पार्ट ऑफ दैट, फिर क्या लग रहा होगा मुझे। और आज अगर कोई नाम ले कि बड़ी बड़ी ऐसी जगहों का या ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस का, या ऐसे जो बहुत ही सख्त जालिम और वो हैं जो कि लोगों को पकड़ लेते हैं और फिर उनके साथ क्या क्या टॉर्चर करते हैं, उनकी जगह पे आप आले फिरौन को रख के देखें, तो फिर इनके लिए कितनी बड़ी रिलीफ होगी कि ये गर्क हो गए सारे और अब इनमें से कोई नहीं बचा। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर ये लोग आ गए एक मैदान में, मैदाने तीह जिसको कहते हैं, वहां पर फिर अब इनको शाम की तरफ जाना है। शाम ये सारा इलाका कहलाता था जिसमें पैलेस्टाइन भी है, अब का शाम भी है, सब ये जगह सारी शाम ही कहलाती थी। तो अब कहा जाता है कि इन लोगों ने खुद मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि हम अब आजाद हो गए, अब हमें कोई शरीयत मिले, कोई लॉज मिले, हमने कैसे जिंदगी गुजारनी। तो मूसा अलैहिस्सलाम इनके पास हारून अलैहिस्सलाम को छोड़ के और तूर पे गए, और तूर पे गए और वहां उन्होंने के अल्लाह ताला कोई शरीयत दे, उसका जिक्र आ रहा है, वह इज वादना मूसा 40 लैलतन, और जब हमने वादा किया मूसा अलैहि सलाम से 40 रातों का, अल्लाह ताला ने मूसा अलैहि सलाम को पहले 30 दिनों के लिए बुलाया था। और रातें का मतलब है रात और दिन, क्योंकि रात पहले आती है, रात पहले आती है, जैसे अब हम कहें फ्राइडे नाइट, तो फ्राइडे नाइट ये नहीं होगी जो बिटवीन फ्राइडे एंड सैटरडे, फ्राइडे नाइट किसको कहेंगे जो बिटवीन थर्सडे एंड फ्राइडे है, वो फ्राइडे नाइट है, तो रात पहले आती फिर दिन है, ठीक है। तो 30 रातों का वादा था, फिर अल्लाह ने और 10 बढ़ा दी, और इतने दिन मूसा अलैहिस्सलाम रोजे से रहे, सोचे रोजे से रहे, उनको भी जब शरीयत मिली है, किताब मिली है, तो वो रोजे से थे, और हमें भी रमजान में अल्लाह ताला ने हमारी किताब दी है। तो वो 40 लैला, वहां पे 40 दिन, अब ये पीछे कौम वेट कर रही है कि आई नहीं आई नहीं, अब उनके लिए वेट बड़ा मुश्किल हो गया। और वहां पे उनमें एक आदमी था, जादूगर था, सामरी के नाम से, उसने कहा मूसा तो भूल गए हैं, असल में खुदा तो उनका ये है, उसने एक बछड़ा बनाया काफ सोने का बनाया और किससे, उनके जेवरों से ही लेके, और उसके अंदर वो मट्टी डाली जो उसने उठा ली थी जिस वक्त के बनी इसराइल समंदर से गुजर रहे थे, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपने घोड़े पे वहां से गुजरे और जो उनके घोड़े की टापे हैं वहां से मिट्टी उसने उठाई थी। उसको कैसे पता चला? बाज रिवायात में आता है कि वो वहां पे ग्रीनरी हो जा रही थी जहां जहां पे घोड़ा अपने पैर रखता था। एनी हाउ, ये इसराइली रिवायात है, बाहर कैफ उसने उठाई या नहीं उठाई, लेकिन कुछ रिवायत में यह है कि उसने उठाई थी और वो उसने डाली तो वो उसमें से भी कुछ आवाज सी निकलने शुरू हो गई थी बछड़े में से। उसने कहा लोगो आओ इसको पूजा पूजो इसको, ये है असल में तुम्हारा खुदा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया सुम मतखज तुम अजला मिन बाद ही, तो तुमने बना लिया बछड़े को इसके बाद। क्या बना लिया? आगे देखें वह अंतुम जालिमून, और तुम जालिम हो। तो बात तो कंप्लीट नहीं हुई, क्या बना लिया? माँ बना लिया, बाप बना लिया, बहन भाई बना लिया, क्या बना लिया? ये बात क्यों नहीं बताई गई कि इलाह बना लिया? इसलिए कि एक किसी भी ईमान वाले के लिए ये बड़ी गैरत की एक बात है कि वो अल्लाह को छोड़कर और किसको माबूद बना ले, एक ऐसी चीज को जो कि सोने की बनी हुई है, एक जानवर है, उसके बुत को अपना इलाह बना के बैठ जाए। तो ये बात भी नहीं कही गई सुम मतखज तुम इजला मिम बाद ही, क्या इसके बाद तुमने बछड़े को बना लिया? क्या इलाह का लफ्ज ही नहीं है यहाँ पे, माबूद का लफ्ज ही नहीं है यहाँ पे, बताया नहीं गया कि क्या बना लिया उसको। इसलिए कि वो इस काबिल नहीं है कि उसकी इबादत की जाए। तो ये भी इतनी वर्थलेस चीज है कि इसको मेंशन भी नहीं किया गया कि उसको ये इलाह बनने के काबिल नहीं है। ठीक है, तो और वह अंतुम जालिमून, और तुम जालिम थे। कैसे वो जालिम थे? उन्होंने क्या जुल्म किया था? अच्छा, जो जो ही आपके जहन में जुल्म का लफ्ज आता है तो क्या होता है कि किसी ने जुल्म किया, तो हमारे जहन में आता है कि जैसे कोई किसी को कोड़े मार रहा है, कोई किसी के साथ बदतमीजी कर रहा है, कोई किसी ने किसी को स्ट्रेंगल कर दिया है, किसी को जंजीरों में बांध के रखा हुआ है, तो ये बड़ा जुल्म हो गया भाई। हालांकि आपको पता है सबसे बड़ा जुल्म क्या है? शिर्क। शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है, क्योंकि जुल्म क्या होता है? हकदार से उसका हक छीन लेना। अल्लाह का हक है कि उसकी इबादत की जाए, और लेके उसका हक, वो जो रब्बुल आलमीन है, तो किसको दे दिया? बछड़े को, उसको पूजना शुरू कर दिया। अब जब मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए तो सोचे उनका क्या हाल हुआ होगा कि मैं तुम्हारे लिए शरीयत लेने गया हूं, तुम क्या कर रहे हो पीछे? तुम ईमान से ही फिर गए? सुम्मा आफ़ौना अनकुम मिम बादी दालिका, फिर दरगुजर किया हमने तुमसे इसके बाद, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र अदा करो। अब अल्लाह ताला ने फिर भी ये कि इन्होंने शिर्क किया था, शिर्क बहुत बड़ा गुनाह, यानी सारे गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है। इसीलिए हमें जरूर इस बात को समझना चाहिए कि शिर्क क्या होता है, हमें तो समझ ही नहीं होती ना। इसीलिए हम कभी बाबों के पीछे चल पड़ते हैं, कभी वो मेरा काम करा देगा, कभी किसको सजदे शुरू कर देते हैं, कभी दुआएं किसी से मांगने शुरू कर देते हैं, हमें पता ही नहीं शिर्क क्या है। हमें तो बस एक कलमा रट लिया और बस सोच लिया कि हम तो पक्के सच्चे मोमिन हो गए। ये भी उस वक्त के मुसलमान हैं, ये कोई काफिर नहीं थे, कि कोई काफिर कौम की नहीं बात हो रही, उस वक्त उस जमाने के मुसलमान बनी इसराइल है। तो अब तुम्हें अल्लाह ने फिर भी माफ कर दी, मिम बाद ही दालिका, इसके बाद भी, किसके बाद भी? इसके बाद भी कि तुमने शिर्क जैसा गुनाह किया, इसके बावजूद अल्लाह ने तुम्हें माफ कर दिया। और कैसे माफी हुई थी इनकी, ये बात अगली आयत में, आयत 54 में आ रही है। लेकिन पहले ये समझ लें कि अल्लाह ताला ने इनको माफी दे दी, ये इतनी बड़ी बात है कि अल्लाह ताला ने फरमाया लअल्लकुम तशकुरून, शायद कि तुम शुक्र अदा कर लो। यानी इसका मतलब है कि माफी मिल जाना भी इटसेल्फ एक नेमत है कि अल्लाह तूने हमें माफ कर दिया, इसके ऊपर भी शुक्र अदा करना चाहिए इंसान को। और किसी को अगर तौबा की तौफीक मिल जाए तो ये भी एक नेमत है जिसपे भी शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह मुझे तूने तौबा की तौफीक दे दी। और इतना बड़े जुर्म के बाद भी, जिसको आपको पता है ना कि कोई अगर शिर्क करता हुआ मर जाए तो उसके लिए कोई तौबा नहीं, उसका ये गुनाह कभी नहीं माफ होगा। और शुक्र क्या चीज होती है कि इंसान अपने दिल में समझे कि किसी ने मुझे ये नेमत दी है, इसमें उसके दिल के अंदर ये जज्बात हो, जुबान से भी बोले कि जो नेमत देने वाला है उसके गुण गाए, और अपने आज़ा से भी उसके आगे हमेशा झुका रहे, उसकी ताबेदारी करे, ठीक है, उसकी इताअत करे। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे ये बता के कि हमने माफ कर दिया, जबकि कितना बड़ा गुनाह था, एक नेमत याद कराई, कि एहसान याद कराया उनको कि देखो तुम्हें माफी मिल गई, बहुत बड़ी बात है। यानी अल्लाह ने एक वन मोर चांस तुम्हें दिया, हालांकि ये इतनी बड़ी बात थी, फिर भी अल्लाह ने चांस दिया, समझ आई। और दूसरी क्या बात समझ आई, अच्छा पिछली आयत से ही एक और बात जो रह गई वो ये कि देखिए मूसा अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह ने वादा किया 40 लैला का, क्या देने के लिए, किताब, ठीक है, वही का जो जो शरीयत थी। और हमें इससे ये पता चला कि उनको एक तरह से मेंटली फिजिकली तैयार किया गया किताब देने से पहले। तो जो हमारे पास किताब है इसको लेने के लिए भी तो कोई तैयारी चाहिए होती है, अपने अंदर को पाक करना, इसके लिए भी कुछ ऐसा टाइम हमें निकालना चाहिए जो हमारा अल्लाह ताला के साथ 1-to-1 हो, जिसमें अल्लाह से बातें करें। क्योंकि अल्लाह ताला चाहते तो देखिए क्या ऐसा नहीं हो सकता था, मूसा के साथ वहीं पे रहते, उन लोगों के पास भी रहते, उनको देखते भी रहते, उनको सुपरवाइज भी करते रहते, उनको अकेले छोड़ के ना आते और ना ये प्रॉब्लम भी ना होती, वहीं पे उनको मिल जाती तौरात, वहीं पे उनको तख्तियां दे दी जाती, यहां पे बुलाने का क्या मकसद था। इसका मतलब ये जो किताब होती है ना, ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत। इसके लिए अल्लाह ने तैयार किया पहले मूसा अलैहिस्सलाम, 40 दिन का टाइम उनको मिलता है वहां पे, और उसके बाद उनको किताब मिलती है। तो हमें भी समझना चाहिए कि आज हम कुरान को पढ़ने सीखने आए ना, इसकी भी कोई तैयारी चाहिए, इसके लिए भी यकसुई चाहिए, फोकस होना पड़ेगा। वहां पे फोकस थे, कोई भी नहीं था वहां पे, अकेले हैं दूर, और तलब चाहिए, ये शौक चाहिए। देखिए मूसा अलैहिस्सलाम जब जाते हैं तो अपने भाई हारून को पीछे छोड़ के जाते हैं, तो उनसे कह के जाते हैं कि मैं जा रहा हूं अल्लाह से मुलाकात के लिए, और जल्दी जल्दी जाते हैं। उनको जल्दी किस चीज के लिए थी, अल्लाह से मुलाकात की, और ये कि मुझे ये वही मिले कि ये तख्तियां मिले। तो ये उसी को मिलता है ना जिसके अंदर शौक हो, जिसके अंदर तलब हो, जो अपने आप को तैयार करे इसके लिए, अपने दिल को भी, अपने अपने आप को रूहानी तौर पे भी, अपने किरदार को भी, अपने अखलाक को भी, अपने जिस्मानी तौर पे भी। अल्लाह ने ऐसे ही तो नहीं रोजे रखवाए ना, तो अंदर बाहर पाक कराया, और फोकस हो, और एलोकेट किया उन्होंने एक टाइम, जिस जो 40 दिन का टाइम था इस वही को लेने के लिए। हम सोचते हैं हम ना टाइम दें, ना हम यकसुई इख्तियार करें, और फिर हम कहते हैं हमें आता ही नहीं है, हमें याद ही नहीं होता। याद कैसे होगा जब आप ना वक्त निकालेंगे, ना उसकी दोहराई करेंगे, ना उसके साथ टाइम स्पेंड ऐसे करेंगे कि आपने उसको सीरियसली लिया हुआ, बस खुद ही याद हो जाए। बात ये सिर्फ कह देना हमें नहीं याद होता, ये कोई सलूशन नहीं है। ये बताइए आपने कितनी दफा पढ़ा दिन में, 5 दफा कम से कम पढ़ा था, हर नमाज के बाद दोहराया था, आप फोकस रोके पढ़ रहे थे, क्योंकि ये वही, ऐसे ये वही का इल्म है, ये बड़ा कीमती है, ये ऐसे ही नहीं मिल गया पैगंबरों को भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब वही आती थी तो उनकी कैफियत क्या होती थी, तो ये बड़ा कीमती है, इसकी कीमत को जानने, ये आम किताबों की तरह नहीं है, रिसालों की तरह नहीं है कि आप कहीं भी बैठे हुए, चलो जी साथ टीवी भी लगा हुआ है, साथ और भी चीजें चल रही हैं, आप साथ हम पढ़ भी रहे हैं भाई, इसके लिए बहुत फोकस होना चाहिए, और अल्लाह से दुआएं भी करनी चाहिए। अच्छा, तो इस हमें आज एक और चीज पता चली कि क्या चीज एक और है जिसके ऊपर हमें शुक्र अदा करना चाहिए जब हमें तौबा की तौफीक मिल जाए, क्योंकि हर एक को तौबा की तौफीक भी नहीं मिलती। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं तो मैंने क्या बुरा किया, मैं कौन सी ऐसी गुनाहगार हूं, किस बात पे तौबा करूं आप, मतलब हाँ, मगर उनको कहेंगे कि आप तौबा करें, कहेंगे क्या हम बहुत बुरे हैं जो आप हमें तौबा का कह रहे हैं। तो ये ढिठाई जो होती है ना कि मैंने क्या किया है, ये इसका मतलब तौबा की तौफीक ही छीनी हुई है। तो इसलिए ये भी एक अल्लाह का शुक्र अदा करें जब अपनी गलतियां नजर आए और तौबा की तौफीक मिल जाए। ये शुक्र के काबिल चीज है, अक्सर तो गलती नजर ही नहीं आती ना। और हमें ये भी पता चला कि देखिए उन्होंने शरीयत कब मांगी और मूसा अलैहि सलाम ये कब शरीयत लेने के लिए उनके लिए गए, वहां पे क्यों नहीं चले गए जब फिरौन के अंडर रह रहे थे। ये सारी मैं आपको ना अमल की बातें बता रही हूँ, ये नहीं आपको तफसीर में मिलेंगी, इसलिए इन पॉइंट्स को आपने लिखना है। बाकी जो मैंने आपको हिस्ट्री बताई है ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, बस समझ लेंगे एक दफा इंशाल्लाह याद हो जाएगी, अरे आपको किसी तफसीर की किताब में से भी मिल सकती है। लेकिन ये जो बातें मैं आपको बता रही हूँ इनको नोट करें, कब वो गए थे ये शरीयत लेने के लिए, जब आजाद हो गए। तो जिस वक्त किसी जगह पर किसी कोई कौम आजाद होती है तभी वो शरीयत अप्लाई कर सकती है, अल्लाह के कानून को अप्लाई कर सकती है। जब वो किसी जगह पर एज माइनॉरिटी रह रही हो, पिसी भी रह रही, तो वहां पे थोड़ी वो शरीयत नाफिज कर देगी। तो पहले जब कोई अथॉरिटी आती है जहां हकूमत वो पा लेते हैं वहां शरीयत का निफाज होता है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि किसी मुल्क के अंदर थोड़े से रह रहे हैं हम यहाँ पे शरीयत नाफिज करेंगे। शरीयत किस पे नाफिज करोगे, शरीयत वही होती है जब आजाद होते हैं, जब हकूमतें मिलती हैं। अच्छा, आप इन्होंने बछड़ा ही क्यों बनाया था, कहा जाता है बास जगह पे आता है कि फिरौन की कौम में भी बछड़े की पूजा की जाती थी, या इन्होंने रास्ते में कहीं बछड़ा देख लिया था, लोग उसकी पूजा कर रहे थे, ठीक इस वजह से इन्होंने किया था। वल्ला वाला, मगर आप देखते हैं कि आज तक ये गाय या बछड़ा या इन्हीं चीजों को लोग बनाते हैं, और कई मजाहिब के अंदर इनको आपने देखा है खुदा का दर्जा दिया होता है, इनको खाते नहीं है, इनको जिबा नहीं करते कि नहीं ये तो पता नहीं ये भी एक खुदा ही है। तो ये कदीम जमाने से चला आ रहा है गाय के साथ कोई मसला इंसानों का, ये आज से नहीं आया। अल्लाह तआला ने फरमाया वह इद आतैना मूसल किताब वल फुरकान, फिर जब हमने दी मूसा अलैहि सलाम को किताब और फुरकान, किस लिए दी थी, किस लिए दी होगी, आप क्या आपका क्या ख्याल है, आके पढ़ते जाएं। किताबें इसीलिए आती हैं, तो सवाब भी तो मिलेगा ना, सवाब लेना तो पढ़ते जाएं, उसको खत्म करते जाएं, फिर से पढ़ना शुरू कर दें, फिर अपने बच्चों को भी उसके नाजरे पढ़ा लें, फिर उनके जो है ना आमीन रखें, बड़ी सी पार्टी करें, और या फिर इसके अलावा क्या है कि इसके अंदर से कोई वजीफे वगैरह के लिए आए थे बता दें, हमारे मसले हल हो जाए, इसलिए अल्लाह ने किताबें नाजिल की हैं। या फिर ये कि भाई जब दुल्हने रुख्सत होने लगे तो फिर भी तो उनके सर पे कुछ रखना है ना, वैसे तो दुल्हन बेचारी ने कभी कुरान नहीं पढ़ा, तो उसको उसके साये में तो जरूर भेजना है, तो अब उसका साया करके भेजें। तो इन चीजों के लिए अल्लाह ने किताब नाजिल की। ऐसा ही है, अल्लाह ताला क्या बताते हैं किताब का नजूल क्यों होता है, अल्लाह ताला क्यों भेजते हैं, लाल लकुम तहतदून, ताकि तुम्हें हिदायत मिल जाए। हिदायत क्या होती है, हम अपने बच्चों को कहते हैं ना अल्लाह तुम्हें हिदायत दे, जब कोई रॉन्ग डूइंग कर रहा होता है तो फिर होता है कि अल्लाह वो सीधा रास्ता दिखा दे, सीधा रास्ता दिखाने के लिए आई है, हिदायत पा जाए, हम बेहिदायती हैं, हमें हम खुद नहीं रास्ता मिल सकता, हिदायत पाने के लिए किताबें आई। तो ये बड़ा अच्छा तरीका जो हम यूज करते हैं हिदायत पाने का, क्या इसी तरह हिदायत पाई जाती है, उनको भी हिदायत के लिए दी गई और हमें भी, कोई डिफरेंट बात नहीं कही गई, हुदल लिल नास, हुदल लिल मुत्तकीन, अभी आप पढ़ के आए हैं स्टार्ट में, तो हमें भी हिदायत के लिए ही दी गई, लेकिन उन्होंने भी इससे हिदायत ना ली। मैं आपको बताया था वो भी ऐसे पढ़ते थे कि उनको ना समझ आती थी, बस पढ़ते जाते, आज हमने भी वही तरीका इख्तियार कर लिया, क्या इसी तरह हिदायतें ली जाती हैं। और वल फुरकान, फुरकान दिया, और मुफसरीन कहते हैं फुरकान से भी मुराद किताब ही है, किताब जिसमें, यानी फुरकान, जो फुरकान क्या चीज होती है, जो फर्क करने वाली, डिफ्रेंशिएट करके बताती है कि ये हक है, ये बातिल है, ये बुराई है, ये भलाई है, ये सही है, ये गलत है। फर्क, फर्क से आप समझ लें, फुरकान फर्क से, फर्क करके दिखा देगी, ये सही सिराते मुस्तकीम है और ये गलत रास्ता है, ये शैतान का रास्ता है। ये फर्क कौन बताएगा? किताब बताएगी। तो उन्होंने, उनको दी गई किताब और फुरकान, और हमें भी, आपको पता है हमारे तो कुरान में एक सूरत का नाम है सूरह फुरकान, हमें भी ये किताब फुरकान के लिए दी गई। लेकिन फिर हमें क्यों नहीं फर्क करना आया? हाँ, क्यों लोग आज तक कहते हैं हमें तो समझ ही नहीं आती, पता ही नहीं है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, समझ ही नहीं आती क्या करें। ये कंफ्यूजन कैसे हो गई फिर? जिनके हाथों में फुरकान है, जिनके घरों में, हर घर में, हर मुसलमान घराने में फुरकान है, वो कैसे इतने कंफ्यूज्ड हैं कि उनको ये ही नहीं समझ आती कि हक पे कौन है और बातिल पे कौन है? जो उन लोगों को सही समझते हैं, जो खवारिज हैं, जो फसादी हैं, जो दुनिया में खून खराबा करते हैं और मुसलमानों को बदनाम करते हैं, उनको क्या सोचते हैं ये सही है? हैं तो मुसलमान ना बड़े नमाजी हैं वो, क्योंकि अगर तुम्हें ये, तुमने फुरकान समझा होता, इसको अपना ओढ़ना बिछोना बनाया होता, इसको अपनी जिंदगी बनाया होता, तो तुम्हें समझ आती। हमें तो समझ ही नहीं आती, पता नहीं, मैं बहुत छोटी थी जब मैंने किसी को कहते थे सुना, जब कुछ मुझे समझ नहीं थी, लेकिन वो बात ना मेरे दिमाग में आज तक है। किसी ने मेरे सामने कहा फलां फलां जो है वो भाई मिजारों पे बहुत जाते हैं, वहां से मांगते हैं, और वो फलां है, वो कहते हैं ना करो ऐसा। भाई समझ ही नहीं आती ये वो सही है या वो सही है, और वो जैसे एक बच्चे के जहन के अंदर एक बात बैठ जाती है कि क्या सही है फिर? अगर फुरकान है जिसके घर के अंदर, अगर उनको ही ये समझ नहीं है, तो बताएं और कौन से फरिश्ते उतरेंगे समझाने के लिए? हमें तो समझ नहीं आती कौन सा ग्रुप ठीक है, कौन सा नहीं है, क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। कैसे आप इतनी कंफ्यूजन में रह सकते जबकि अल्लाह ने फुरकान उतार दी? लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि फुरकान तो हर घर में है, मगर इस फुरकान को खोले कौन, इसको समझे कौन, इसको सीखे कौन, इसके ऊपर तदब्बुर कौन करे? कितनी दफा आता है कि इमाम शाफी ने किसी एक मसले के लिए 300 दफा कुरान पढ़ा, मतलब स्टार्ट से एंड तक किसी एक मसले के लिए। जब आप किसी कंफ्यूजन में और इस कुरान को समझेंगे, सीखेंगे, आपके सामने सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, मगर हम कंफ्यूजन में शायद रहना पसंद करते हैं, या फिर हमारे लिए ये कोई इतनी बड़ी बात ही नहीं। कंफ्यूज्ड रहना हमारे लिए कोई बात नहीं है, हालांकि आपको पता है कि जो ईमान कंफ्यूजन के साथ होगा, जिसमें शक होगा, वो तो ईमान काबिले कबूल ही नहीं। अगर यही नहीं समझ आएगा भाई किसको कहां जाके मांगना है और कहां से नहीं मांगना, यही अगर समझ नहीं आई और इसको लेके बैठे में और कंफ्यूजन में, वी आर ओके। मुझे पता है कि ये क्या एक्सेप्टेबल होगा अल्लाह के यहाँ? क्या कि कहा जाएगा कि आपके पास फुरकान था, ये तो ऐसे ही है कि कोई कहे हाँ मुझे पता चला मुझे कैंसर है, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं तो बस ऐसे ही बैठी हूँ। ये फौरन भागेंगे, उसका इलाज कराएंगे, दौड़ धूप करेंगे, क्या करेंगे? नहीं, शक एक ऐसी बीमारी है, ये कंफ्यूजन ये ऐसी बीमारी है जो अंदर लग गई भी है, और बैठे में कह रहे हैं कोई बात नहीं, ये कोई बात नहीं की बात नहीं है, ये आपके ईमान की बात है। जहां आपको कोई कोई शुभात आने लगे, कोई कंफ्यूजन आए, फौरन उसका इलाज कराएं, और उसका इलाज क्या है? फुरकान से होगा। ये बताएगा फर्क, ये बताएगा किसका रास्ता सही है, किसका गलत है, ये रहनुमाई करेगा। लेकिन आओ तो सही इसकी तरफ, समझो तो सही, इसको पढ़ो और इसके साथ वक्त लगाओ। लेकिन जिस वक्त फुरकान को सीखने का मकसद भी वाहवा बन जाए, फुरकान को सीखने का मकसद भी सिर्फ सर्टिफिकेट बन जाए, तो फिर क्या फर्क पता चलेगा? कोई फर्क तो बताने के लिए नहीं है, बस जल्दी जल्दी करो, टेस्ट पे टेस्ट दो ताकि हमें सर्टिफिकेट मिल जाए। उसके बाद नौकरी कहाँ पे मिलेगी हमें? क्या ये सर्टिफिकेट लेकर नौकरी मिल जाएगी? अगर यही मकासिद है तो क्या क्या रास्ता नजर आएगा? तो ये तो हमारे लिए लाइट है, नूर है, जिसे हमें पता चलता है किस रास्ते पे जाना है। फर्क समझ आ जाता है। और जिनको आज तक नहीं समझ आया, जिन्होंने कोर्स कर लिए हैं ना पिछले, और अगर अभी तक वो ये कह रहे हैं, सबका ही रास्ता ठीक है, सारे ही ठीक है भाई, किसी को भी ना गलत को, सब ठीक है, आखिर सब खुदा को ही पाना चाहते हैं ना, तो फिर इसका मतलब उनको तो कुछ समझ ही नहीं आई, उनको तो फुरकान मिला ही नहीं, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं चला कि फर्क क्या है, उनको यही नहीं समझ आई कि दोनों इन रास्तों में क्या क्या, कौन सा भलाई का है, कौन सा बुराई का है, कौन सा गलत है, कौन सा सही है। और हम इसको बड़ी अपनी आजी समझते हैं कि सब ठीक है भाई, भाई नहीं, लड़ाई ना करो किसी को ना गलत को। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत और तमाम अंबिया की दावत तो आपने लेके तो एक तरफ डाल दी कि वो तो नऊज़ु बिल्ला कोई बेकार थी, वो उनको भी ना किसी को नहीं कुछ कहना चाहिए था, बताना ही नहीं चाहिए था। तो ये फुरकान फर्क बताता है, खुदा के लिए खुद तो आंखें खोलने के लिए इसको इस्तेमाल करो, अल्लाह ने आपको इतनी बड़ी नेमत दी है, लअल्लकुम तहतदून। तो इसी मकसद के लिए अल्लाह ने भी उनको उनको भी दी थी किताब। और फिर वह इस काला मूसा ली कौमी, या कौमी इन्नकुम ज़लमतुम अन्फुसकुम बित्तिखाज़िकुमुल इजला। ए जब मूसा अलैहि सलाम ने कौम से कहा, वो मूसा अलैहि सलाम तो आए तो कौम का ये हाल देखा जब उन्होंने कि ये तो बछड़े की पूजा करने में लगे हुए हैं, तो उन्होंने कहा या कौम, ए मेरी कौम। अब देखें ये किसको कह रहे हैं, जिन्होंने शिर्क जैसा क्राइम कर दिया है, कोई छोटी बात नहीं की थी, उनको कह रहे हैं या कौमी, ए मेरी कौम। और आप देखेंगे आगे भी जितने पैगंबरों की बातें आप इंशाअल्लाह ताला आगे भी पढ़ते रहेंगे, वो सारे कहते हैं या कौमी या कौमी। और उनकी कौम कौन होती है, काफिर हैं, मुशरिक हैं, और यहाँ पे कबीरा गुनाह करने वाले हैं। अब मुझे बताएं हम जिन कौमों से हैं, वो अगर काफिर कौम है, हम कभी कहेंगे या कौमी, हम तो कहेंगे नहीं काफिर हैं काफिर। अब हमारे बच्चे मसलन हम जिन मुल्कों में रह रहे, हमारे बच्चे वहीं पैदा हुए, वहीं पले बड़े, उनकी कौम कौन है? अब उनकी कौम वो तो नहीं है जो जो जिनको हम उनके माँ बाप भी पीछे छोड़ के आ गए, उनकी कौम तो वही है ना जिनमें वो रह रहे हैं। क्या अपने बच्चों को कभी कहने देंगे कि वो कहें या कौम मेरी कौम, तो आप तो परेशान होकर बेहोश हो जाएंगे कि हाय इन्होंने तो इनको कह दिया या कौम, ये तो इनके बन गए बस। अरे नहीं, जब तक उनके साथ खैर ख्वाही नहीं होगी कि ये मेरी कौम है, ये मेरे लोग हैं, इनको मैंने पैगाम देना है, किस तरफ ये जा रहे हैं, जब तक ये खैर ख्वाही नहीं होगी क्या पैगाम देंगे। हम तो कहते बस सिक्लूड होके रह जाओ, हम सिक्लूजन में रहेंगे, तो ये नहीं आपको कहा जा रहा कि उनके साथ बेस्ट फ्रेंड बन जाए, लेकिन ये भी नहीं कि आप सिक्लूजन में चले जाएं कि हाँ ये तो काफिर है, ये तो हमारे बिल्कुल हमारा इनके साथ नहीं कोई ताल्लुक, बस अपने आप को बस अलग करके, ये नहीं है। हर पैगंबर ने कहा या कौमी, तो क्या वो उनके साथ मिल गए, वो तो उनकी कौम है ही ना, लेकिन ये बताती है चीज कि वो उनको उनके साथ खैर ख्वाही रखते थे, है मेरी कौम। ये नहीं कहा गया अब दूर हो जाओ मेरे सामने से, तुमको मैं अपनी कौम कहूं, तुमने मेरा क्या, मेरी टीचिंग्स का क्या किया, मेरी तालीमात को भूल के और बछड़े को पूजना शुरू कर दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं या कौमी, तो वो कहते हैं कि तुम लोग तो काफिर और मुशरिक हो, चले जाओ तुम लोग यहां से, मैं तो तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, मैं कैसे ये कहूंगी ये मेरी कौम, नहीं मेरे लोग। ये दर्द जब तक नहीं उठेगा ना कि ये मेरे लोग हैं, तब तक नहीं हम दावत का काम कर सकते कि हम इनको दावत दें, हम तो उनसे दूर भागते हैं कि वो अछूत है, तो फिर कैसे दावत देंगे, किसको देंगे दावत। तो उन्होंने कहा या कौमी, है मेरी कौम, इन्नकुम ज़लमतुम अन्फुसकुम, तुमने अपनी जानों पे जुल्म किया है। कैसे जानों पे उन्होंने कैसे जुल्म कर दिया, तुमने अपने इसलिए कि शिर्क किया ना, जब इंसान कोई गुनाह करता है ना तो वो अपनी जान पे ही जुल्म करता है, किसी और के साथ नहीं है। जो आपके बाप आदम अलैहि सलाम ने क्या कहा था, रब्बना ज़लमना अन्फुसाना, ना हमने अपनी जानों पे जुल्म की, क्योंकि गुनाह करने से अल्लाह को कोई नुकसान नहीं हो रहा, हम क्या कर रहे हैं, अस्तग़फिरुल्लाह, अगर हम यहाँ पे यतीम का माल खा रहे हैं तो हम क्या करें, अपने पेट में अंगारे भर रहे हैं, क्योंकि ये सजा है वहां पे, ये सजा है ना, तो किसके साथ जुल्म किया, हम तो अपने आप पे जुल्म कर रहे हैं, वो यतीम के साथ क्या जुल्म, वो तो जो उसके साथ वो है उसकी तो कंपनसेशन हो जाएगी। हमने अपने आप के पर हम वो जो खा रहे हैं हमें यहां पे क्या लग रहा है, ये निवाले हैं, ये पैसे हैं, मगर वो क्या है, वो आग के गोले हैं। अपने साथ ही जुल्म किया ना, हम जो भी गुनाह करते हैं वो हम अपने साथ जुल्म कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने लिए आग वहां पे तैयार कर रहे होते हैं। और आग जल गई, और आग तेज हो गई, और सजा हो गई, और एक टॉर्चर अपने लिए रख लिया, तो सजाओं को बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। तो अपने साथ जुल्म है, तो तुमने जुल्म कर लिया अपने साथ। बित्तिखादे कुमल अजला, बछड़े को बना के बनाने से, उन्होंने भी ये नहीं कहा इला बनाने से, बछड़े को बनाने की वजह से तुमने अपने पर जुल्म कर लिया। क्या बनाने की वजह से, ये नहीं बोलना, क्योंकि वो इस काबिल नहीं है कि उसके लिए ये बात भी कही जाए। फतूबू इला बारीकुम, अब जब गुनाह हो जाए तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, ये नहीं कि अब तो हमारा गुनाह तो कभी माफी नहीं हो सकता, बस छोड़ो अब हमने इतना बड़ा गुनाह कर दिया बस। नहीं, तूबू, गुनाह जितना भी बड़ा हो तौबा करो, तौबा करो। किधर, इलाल्लाह भी कह सकते थे, इला रब्बिकुम भी कह सकते थे, फरमाया इला बारीकुम, अपने बारी की तरफ तौबा करो। क्यों बारी क्यों कहा, ये तुम्हारा पैदा करने वाला वो है, और तुम किसकी पूजा कर रहे हो जिसको तुमने अपने हाथों से पैदा किया। जो तुम्हारा पैदा करने वाला वो डिजर्व करता है कि तुम उसकी इबादत करो, और तुम इनकी इबादत शुरू कर रहे हो। अब क्या अल्लाह ताला की तरफ से क्या आया कि अब इनकी तौबा कबूल तब होगी जब एक दूसरे को कत्ल करेंगे। तो फरमाया फकतलू अनफुसकुम, तो कत्ल करो अपने नफ्सों को। तो अब इनको कह दिया गया, अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह ताला माफ फरमाए, इनको कह दिया गया कि अब आपस में एक दूसरे को कत्ल करना है। एक रिवायत में आता है कि जिन्होंने नहीं पूजा की थी वो खड़े हो गए, और दूसरी तरफ वो खड़े हो गए जिन्होंने पूजा की थी और वो उनको मार रहे थे। लेकिन दूसरी रिवायत में ये भी आता है कि खुल्लम खुल्ला मारना है, और अंधेरा छा गया और कत्लेआम होगा। अब कौन किसको मार रहा है, बाप बेटे को, बेटा बाप को, भाई भाई को, यानी एक खून खराबा था। ऐसे में वो जो उनकी औरतें थीं और ये सब रोने लगे, और हजारों लोग कत्ल हो रहे हैं। मूसा अलैहि सलाम एक तरफ बैठे रो रहे हैं, ये नहीं कि मूसा अलैहि सलाम को खड़े पे खुश हो रहे हैं, हाँ बहुत अच्छा हो रहा है क्योंकि तुमने ये किया था, तुम्हारी यही सजा होनी चाहिए थी। नहीं, रो रहे हैं, या अल्लाह ताला, अल्लाह, उनके पास वो कौम के भी लोग आ रहे हैं कि या मूसा आप दुआ करें, या मूसा इस तरह तो हमारे सारे ये खत्म हो जाएंगे। मूसा अलैहि सलाम दुआ कर रहे हैं, अल्लाह मेरी तो कौम खत्म हो जाएगी, ये बनी इसराइल खत्म हो जाएंगे, अल्लाह अल्लाह ताला तू माफ कर दे, अल्लाह तू माफ कर दे। यानी वो भी रो रो के, गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के अल्लाह ताला से माफिया मांग रहे। तो उस वक्त फिर जब अंधेरा हट गया तो फिर इनको रोक दिया गया, और बाज जगह पे आता है कि 70,000 लोग कत्ल हो चुके थे। और ये आसान बात नहीं थी, ये आसान बात नहीं थी कि अपनों को अपने हाथों से कत्ल करना, अपनों को, ठीक है। अल्लाह ताला ने फरमाया दालिकुम खैरुल लकुम इन दबारिकुम। अब इंसान सोचता है ना कि आए ऐसा क्यों हुआ, क्यों ऐसे, तो अल्लाह ताला ने फरमाया ये बेहतर है तुम्हारे लिए, तुम्हारे पैदा करने वाले के नजदीक। यानी तुम सोचते हो ना, तुम क्या देख रहे हो कि हाय वो कत्ल हो गए, और हाय वो बहन भाइयों ने आपस में, यानी बाप बेटे ने आपस में, चचा भतीजे ने आपस में, इन्होंने आपस में एक दूसरे को कत्ल किया, हाय कैसे किया होगा कैसे, और वो औरतें बच्चे रो रहे हैं, और वो दौड़ रहे हैं मूसा अलैहि सलाम के पास, कह रहे हैं आप दुआ करें, मूसा अलैहि सलाम दुआएं कर रहे हैं। तो ये पता नहीं कितनी बुरी बात हो गई। हालांकि अल्लाह ताला ने फरमाया इसमें खैर है। खैर कैसे हो गई इसके अंदर, इसलिए कि हम देखते हैं इस दुनिया की ग्लासेस से हर चीज, इस दुनिया की ऐनक से हर चीज देखते हैं, जबकि अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं कि उनकी जो माफी हो गई, दुनिया में अगर किसी इंसान को सजा मिल जाए ना, वो बेहतर है, उसकी माफी हो जाए वो बेहतर है आखरत की सजा से, क्योंकि आखरत की सजाएं हम नहीं सह सकते। कि अगर किसी को आखिरत का यकीन होगा फिर ही वो ये सोचेगा ना कि यहां पे अगर सजा मिल के माफी हो गई है तो इसके अंदर कितनी बड़ी बेहतरी है। हम क्या सोचते हैं, हाय दुनियावी तौर पे हम देखते हैं हाय ये तो बड़ा बुरा हुआ,
सोचते ही नहीं कि आखरत के तनाजुर में तो देखो आखरत के लिहाज से ये कितना अच्छा हो गया कि यहीं पे वो क्लियर हो गए, क्योंकि अल्लाह ताला ने फिर क्या फरमाया कि ए मूसा गम ना करो, जो जो लोग कत्ल हुए वो हमारे यहाँ शहीदों का दर्जा रखते हैं, वो वहां जिंदा हैं और रिस्क पा रहे हैं, और जो लोग जिंदा रहे इनकी तौबा हो गई, तो अब सारे क्लीन हो गए। तो दुनिया की सजा आखरत की सजा से बहुत हल्की है, कितनी भी बड़ी सजा हो आखरत की सजा तो छोटी से छोटी भी क्या है, एक जहन्नमी के पैरों के अंदर के जो जूता है उसके तस्मे आग के होंगे, और उन तस्मों से बाकी कहीं उसकी बॉडी आग में नहीं, मगर उससे उसका दिमाग बॉयल हो रहा होगा, बॉयल जैसे हंडिया बॉयल होती है। आखरत की सजाएं बहुत सख्त है, यहाँ की सजाओं पे तरस आता है, आए किसी का हाथ काट दिया, ओ चोर का हाथ काटना तो अल्लाह ताला माफ करे, जालिमाना सजा है, ये तो नहीं होनी चाहिए। ये जो वहां पे उसकी सजा होगी वो सोच सकते हैं कैसी होगी, यहाँ पे मुजरिमों पे तरस आता है, लेकिन अगर यहाँ पे किसी को सजा मिल जाती है और वो तौबा कर लेता है तो उसका गुनाह मिट जाता है, माफ हो जाता है, फिर आखरत में उसको सजा नहीं मिलेगी। ज़ालिकुम खैरुन लकुम इंदा बारिकुम, ये बेहतर है। अगर इंसान सोचे ना इस बात को, हम आखरत का तो सोचते ही नहीं ना, हम सारी चीजें यहीं का सोच रहे थे इसलिए हमें बुरा लगता है। सोचो अगर आखरत के तनाजुर में तो ये कितना बेहतर है तुम्हारे रब के नजदीक। फताबा अलैकुम, फिर वो मेहरबान हुआ तुम पर, यानी उसने माफ कर दिया, वो मेहरबान हो गया। सजा तो ये यानी दुनिया की हद तो लगी, दुनिया में तो एक, क्योंकि मुर्तद की एक सजा है, बास गुनाह आपको पता है ना वो कफारे के बगैर माफ नहीं होते, उनमें कफारा देना पड़ता है। अब जैसे कोई किसी को कत्ल कर दे तो उसको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, या तो दियत देगा या फिर किसास के लिए आए। तो इन्नहु हुव तव्वाबुर रहीम, बेशक वही है बहुत तौबा कबूल करने, बार बार तौबा कबूल करता है और बहुत रहम करने वाला, कि उसने फिर ये उठा दिया कानून, इसके बाद फिर किसी के लिए नहीं ये किया कि उसके बाद किसी से ऐसा हो तो उसको ये सजा मिले। वह इज कुलतुम या मूसा, और जब तुमने कहा ए मूसा लन नूमिना लका हत्ता नरल्लाह जहरतन, हम तो नहीं मान लाएंगे जब तक हम अल्लाह को ना देख लें सामने, ये कब हुआ? अच्छा, अब उसके बाद ना मूसा अलैहि सलाम लेकर चले अपने कौम के जो बेस्ट 70 पीपल थे ना, जो बहुत बहुत नेक साले थे, उनको मूसा अलैहि सलाम टूर पे लेके चले। उन्होंने कहा मैं लेके जाता हूँ, तुम वहां पे अल्लाह से माफी मांगो, अल्लाह ताला हमें पाक करे, और ये जो सारा कुछ हुआ है बस अल्लाह ताला के सामने रो गिड़गड़ाओ, तो ये जो बछड़ा पूजने का हुआ, तो उनको लेकर चले कोहेतूर पर और उनसे कहा कि तुम तौबा करो, रोजा रखो, पाक साफ हो जाओ, जो भी उनको कहे चीजें। तो उन्होंने कहा ए अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह से दुआ करें कि वो अपना कलाम हमें भी सुनाए। जब मूसा अलैहि सलाम पहाड़ पे पहुंचे तो एक बादल ने आकर सारे पहाड़ को ढांक लिया और वो इसके अंदर चले गए। जब अल्लाह ताला ने कलाम शुरू किया तब मूसा अलैहि सलाम की पेशानी पर नूर आ गया, ऐसा नूर कि उनकी तरफ कोई देख नहीं सकता था, और बादल की ओट हो गई और ये सब लोग सजदे में गिर पड़े, और मूसा अलैहि सलाम की दुआ से जो ये साथी जिनको लाए थे 70 जो लोग थे बुजुर्ग थे, ये भी अल्लाह का कलाम सुनने लगे, और जो अल्लाह ताला ने अहकामात देने थे जब वो दे दिए और कलाम खत्म हुआ, बादल छट गए, मूसा अलैहि सलाम इनके पास आए तो ये कहने लगे मूसा हम तो आप पे ईमान नहीं लाएंगे जब तक आप अल्लाह ताला को हमें सामने ना दिखा दें। इतनी बड़ी बात, इतनी गुस्ताखी की बात, हालांकि मूसा अलैहि सलाम पर ईमान लाए हैं, पैगंबर उनको समझते हैं, लेकिन अब क्या हम नहीं आपके ऊपर ईमान लाते कि ये बातें सारी अल्लाह की तरफ से, हमें बस दिखाएं कि अल्लाह सामने हमारे आए फिर हम उसको देखें तो फिर हम मानेंगे। अब इसके ऊपर क्या हुआ, फअखदत कुमुस्साइका, तो फिर पकड़ लिया तुमको कड़क ने, एक कड़का आया और सारे के सारे मर गए, वान तुम तंजरून, और तुम देख रहे थे कि ऐसे कड़का आ रहा है।
अब कि कितनी एक बड़ी मुश्किल हो गई मूसा अलैहि सलाम के लिए कि आ जाके बताएंगे अपनी कौम को कि वो कहाँ गए 70 लोग। वो कहेंगे आप उनको किधर छोड़ के आ गए हैं, क्या उनको मार आए हैं, क्या कर रहे हैं उनके साथ, हमारे जो इतने बड़े बुजुर्ग इतने नेक लोग हमारे कहाँ चले गए। तो मूसा अलैहि सलाम ने तो रोना दुहाइयां देना शुरू कर दिया, अल्लाह से दुआएं करना शुरू कर दिया, या अल्लाह ये हाँ अगर तूने मारना ही था तो हम सबको इससे पहले ही मार देता, अल्लाह बेवकूफों के काम पे हम सबको हलाक ना कर, ये तो उनके चीदा जीदा पसंदीदा लोग थे, जब मैं अकेला जाऊंगा वापस तो उनको क्या जवाब दूंगा, कौन मेरी बात को सच्चा समझेगा, कौन मुझ पे उसके बाद ईमान लाएगा। अल्लाह तो तौबा कबूल कर ले, अल्लाह ताला तू माफ कर दे। अल्लाह ताला ने अपना फजलो करम किया, सुम्मा बासना कुम मिम बादी मौती कुम लाल्लकुम तशकुरून, फिर उठाया हमने तुमको मिम बादी मौती कुम तुम्हारी मौत के बाद लाल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र अदा करो। ये अल्लाह ताला की आदत नहीं है कि अल्लाह ताला कभी जो मर जाए एक दफा उसको दोबारा जिंदा करें, लेकिन इस सूरत में आप एक ये पहला वाकया देख रहे हैं ना, इसको नोट करें, इसके बाद भी आप देखेंगे कि कौन कौन था जिसको अल्लाह ताला ने मरने के बाद जिंदा किया। इस सूरत के अंदर आएंगे वो वाकयात। तो ये पहला आपने आज नोट कर लिया। तो हमने उठाया उनको इनकी मौत के बाद, अब इसके ऊपर भी क्या जरूरी है, शुक्र अदा किया जाए, क्योंकि ऐसा नहीं होता लेकिन अल्लाह ने खास अपना फजलो करम किया, अल्लाह ताला का खास एहसान हुआ। तो ये भी हमें यहां से पता चला कि वो लोग आप सोचें जो अभी अभी कत्लो गारत करके एक दूसरे को अब चैन से बैठे हैं, अब मूसा अलैहि सलाम जैसे होता ना कि एक ठीक है अल्लाह ने माफ तो कर दिया, लेकिन अल्लाह के सामने एक अपनी आजी के लिए अपनी आगे ह्यूमिलिटी शो करने के लिए अब उनको लेकर गए कि अल्लाह ताला तू माफ कर दे। हम इंसान जब एक कोई गलत काम कर लेता तो उसके बाद बार बार कहता है ना अल्लाह से कि अल्लाह तू माफ कर दे, मैंने बड़ा गलत किया। अब उनको लेकर गए, उनका हाल क्या है, अभी ये कत्लोगारत हुआ था, वहां जाके फिर कहने शुरू हो गए, उल्टी सीधी बात करना शुरू हो गए। इससे पता चलता है देखिए, एक तरफ इतना ईमान कि एक दूसरे को कत्ल करने पे भी खड़े हो गए, दूसरी तरफ ये ईमान की कमजोरी कि कहा कि अल्लाह को हमें दिखाओ। इससे पता चलता है ईमान कितना फ्लक्चुएट करता है ना, कभी इतना नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर, ऐसे रहता है ईमान। तो इंसान को डरना चाहिए, अगर आज ईमान मजबूत है तो ये नहीं जरूरी कि कल भी ऐसा ही रहे, कल को क्या हालात होते हैं क्या होता है कुछ नहीं पता, तो हमेशा इस चीज से केयरफुल रहना चाहिए कि अल्लाह कभी हमारा ईमान ना कमजोर हो जाए। अपने ईमान को बूस्ट अप करने के लिए हमेशा कोशिशें करनी चाहिए, क्योंकि ईमान खुद ब खुद नहीं बूस्टेड रहता, आपको खुद कोशिश करनी पड़ेगी। आप ऐसी मजलिसों में बैठे हैं, आप ऐसी चीजें सुने, ऐसे लोगों की बात सुने, या कुरान को पढ़ें, या इसकी तफासीर पढ़ें, या हदीस पढ़ें, ये उलूम लें, इससे ईमान बूस्ट होता है। कोई अच्छा लेक्चर सुने उससे ईमान बूस्ट होता है, नेकों की सोबत इख्तियार करें उससे ईमान बूस्ट होता है। तो ईमान को भी बूस्ट अप करने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए इंसान को कोशिश करनी पड़ती है, वरना ईमान फेड होने लगता है, ईमान कमजोर होने लगता है। देखें आप यहाँ पे उनका ईमान कितना, क्या क्या ईमान की हालत हो गई। दूसरी हमें क्या बात पता चलती है, एक और बात समझ में आती है, एक ये कि मूसा अलैहि सलाम ने भी कहा था अल्लाह मैंने तुझे देखना है, उनके साथ तो ऐसा नहीं हुआ, इन्होंने जब कहा अल्लाह को हमें दिखाओ सामने तो इनके साथ ऐसा हो गया, क्या फर्क है, आपको कुछ समझ आता है क्या फर्क है। दोनों ने एक सवाल किया ना, इनका भी सवाल था कि हमने अल्लाह को देखना, मूसा अलैहि सलाम का भी सवाल था, वो बात किसी और टाइम का, इस वक्त का नहीं है, लेकिन था ना, उनके साथ तो ऐसा नहीं हुआ। फर्क ये है, सवाल सवाल में भी फर्क होता है ना। मूसा अलैहि सलाम ने जब सवाल किया था तो उनका सवाल शौक और मोहब्बत की वजह से था, अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ, और इनका किस लिए, हम नहीं तुझे मानेंगे है मूसा, हम जब तक हमें अल्लाह ना दिखा दे तो हमने नहीं मानना। तो सवाल अगर एतराज की सूरत में है, सवाल इसलिए नहीं कि हमने कुछ समझना है या हमें कोई शौक है या हमें कोई मोहब्बत है, बल्कि बस अपनी अकड़ के अंदर, और शक है हमें, हम नहीं मानते, हमें प्रूफ चाहिए, तो हमें सामने आए ना अल्लाह ताला और हमें दिखाए, तो फिर अपना आप पहले दिखाए फिर हमसे हमें दे ये सारे अहकाम, तो तब हम मानेंगे। अब आप उठा के ले आए ये अहकाम, हम तो नहीं इनको मानते, लन नो में ना लगा कि ये अल्लाह की तरफ से ही है। अब आप देखें
हालांकि उनको पता है कि ये पैगंबर हैं अल्लाह के और इनके पास वही आती है, फिर भी कहते हैं अब हमने नहीं माना, हमें अल्लाह दिखा। वहां पहुंच के कुछ और ही उनके तौर तरीके हो गए। तो हमें पता चलता है कि जब हम सवाल करते हैं ना, तो सवाल में इतराज नहीं होना चाहिए, शकूक ऐसे नहीं होने चाहिए कि अल्लाह के ऊपर ही कोई बातें बना रहे हैं। सोच समझ के सवालात करने चाहिए। बाज लोगों के सवालों में आजी नहीं होती, वो अल्लाह ने ऐसे क्यों किया, अल्लाह ने ये क्यों कहा, अल्लाह ने ये क्या बात हुई भला, ये तो बड़ा जुल्म है, फिर इस तरह सोच रहे होते हैं ये किसके बारे में कह रहे हैं। या ऐसे ही बोले जाते हैं कि भाई जो मर्जी अल्लाह ताला के बारे में बात करते जाओ, हाँ जो मुंह में आए बोल दो। इस बात को तो बोल्डनेस समझा जाता है ना, आप कि सोचना नहीं है, बस कुछ भी कह दो अल्लाह के बारे में। अल्लाह ने आप कौन सा आके पूछा है, उससे ज्यादा हम लोगों से डरते हैं। किसी बंदे की बात करनी हो ना, उससे फिर भी डरते हैं कि इसके सामने ना बात करो, मेरा गिरेबान ही पकड़ लेगा। अल्लाह से नहीं डरते, उसके बारे में ऐसी बातें करते रहते हैं, ये सोचते नहीं अल्लाह सुन रहा है, अल्लाह देख रहा है। और इतराज कितने हैं हमारे, आप इतराज करके दिखाएं ना जरा, किसी कोई आपके सामने कोई बड़ा हो उसके प्रति के तुम तो बड़े ऐसे हो, तुम तो बड़े, तुमने क्या किया हुआ, ये क्या, फिर देखते हैं वो आपका क्या करता है। उस वक्त डरते हैं, नहीं, वो तो जेल करा देगा, वो तो ऐसे हो जाएगा, फिर वो ऐसे उठवा लेंगे, पता भी नहीं चलेगा वो, नहीं, कुछ ना बोलो, फोन पे भी बात करते हुए डरते हैं। लेकिन अल्लाह ताला के बारे में बात करते हुए नहीं डरते, इससे पता चलता है ना कि ईमान की क्या हालत है, किससे डरना चाहिए और किससे डरते हैं हम। तो पता चला कि ऐसी बातें मुंह से निकालना जो अल्लाह के ऊपर कोई एतराज हो या ऐसी चीजों, वो नहीं करनी चाहिए। अच्छा एक बात पिछली उसमें रह गई, वो भी उसमें जरा लिख लें, आयत 54 में, जहां पे मैंने आपको बताया था जालिकुम खैरुल लकुम इन द बारिकुम, ये हुक्म बहुत मुश्किल था ना, एक दूसरे को कत्ल करो, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया वो खैर है। इसे हमें अपने अमल के लिए क्या मिलता है, कि बाज हुक्म हमें भी मुश्किल लगते हैं, लेकिन हमेशा याद रखें जालिकुम खैरुल लकुम इन द बारिकुम, इसमें खैर है तुम्हारे लिए। यहां से पता चला ना, वो हुक्म भी इंतहाई मुश्किल था, आसान नहीं था, कत्ल करो अपने ही लोगों को, अपने ही खानदानों को, अपने ही कबीले को, तो कितना मुश्किल है। उसके बाद जब अंधेरा दूर हुआ होगा, तो पता चला होगा कि कौन किसका कौन पड़ा हुआ है जमीन पे, तो मुश्किल था ना, लेकिन इसमें खैर थी। हम क्यों नहीं ये अकीदा रखते कि जितना भी मुश्किल क्यों ना हो, मेरी तबीयत पर जितना भी भारी क्यों ना हो कोई अल्लाह का हुक्म, इसमें खैर है। जब इस कत्ल करने में खैर हो सकती है, तो हमारे तो कोई ऐसी चीजें नहीं है जो जिन अहकाम को हम मुश्किल समझते हैं, बहुत बड़ा बोझ पत्थर समझते हैं अपने ऊपर, वो तो कोई मुश्किल ऐसे नहीं है जितना ये मुश्किल था। लेकिन अल्लाह ने जब इसमें फरमाया खैर है, तो सब में खैर है। वदल्लल्ला अलैकुम अलगमामा, और हमने साया किया ऊपर तुम्हारे बादलों का। अब जब ये उस मैदान में थे, अब ये भी समझ लें कि ये लोग फिर गए, अल्लाह ताला ने इनको वहां पे शाम में एंटर करना था, तो जब ये वहां पे पहुंचे तो इनसे कहा गया कि आप चलो जाके लड़ो उनसे। हिमालिका एक कौम थी वहां पे रहती थी, जाहिर वहां पे खाली तो नहीं होंगे घर के, जाके घुस जाएंगे किसी मुल्क में, वहां पे एक कौम थी ना, अब रह वो वहां पे बसती थी, अब इनका थोड़ी था वो कंट्री, तो अब उसको भी तो जाके इनको लेना था फलस्तीन को। तो अब ये कहने लगे कि हम तो नहीं लड़ सकते, मूसा तुम जाओ और तुम्हारा रब जाके लड़े, हम हमसे नहीं लड़ा जाता। तो अल्लाह ताला ने इनको फिर ये सजा दी कि बस ये इसी मैदाने ती में, ती असल में जो लफ्ज है ना, ता या हा, जो हलवे वाली हा नहीं, दूसरी, ये जो लफ्ज है इसका मतलब ये है सरगर्दा रहना, लॉस्ट रहना। तो ये बस घूमते रहे उस मैदान के अंदर, घूमते रहे, इतना उसी में लॉस्ट हो गए कि सुबह को जहां से चलते थे, शाम को देखते थे वहीं पे होते थे। इससे पता चला कि बिल्कुल उनको कोई सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं रही थी, कि अब तुमने ये कहा ना ठीक है हमने नहीं एंटर होना, हमने हमसे नहीं लड़ा जाता, हम नहीं ऐसे कर सकते, तो फिर ठीक है। यहाँ पे ती का माना परेशानी का भी है, परेशान रहे कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है। 40 ईयर्स तक ऐसा हुआ, 40 ईयर्स इमेजिन कर सकते हैं आप, 40 साल आसान है कोई? और वहां पे कोई ऐसा नहीं था कि कोई शॉप्स हैं, कोई मार्केट है, कोई कुछ है, कोई ऐसा नहीं था, वो खुला एक मैदान था ना, वहां पे कोई इमारतें थी, और ये चलते जा रहे हैं। लेकिन इनकी इस नाफरमानी के बावजूद और इतनी बदतमीजी के बावजूद, फजहब अंत व रब्बुक फकातिला इन्ना हाहुना काइदून, जाओ मूसा तुम और तुम्हारा रब जाके लड़ो, हम यहाँ पे बैठे हैं। इतनी बदतमीजी के बावजूद अल्लाह ताला ने इनके ऊपर गमाम का साया किया कि बादल इनके ऊपर रहे, क्योंकि उन्होंने कहा था हम धूप में कैसे चलते रहे। वह अनजलना अलैकुमुल मन्न व सलवा, और इनके ऊपर मन और सलवा नाजिल किया। अब वहां पे क्या करते, खेती बाड़ी करते, क्या करते, वहां पे काम कारोबार था नहीं, अल्लाह ताला ने इनके लिए मन और सलवा उतारा। मन ना छोटी छोटी ड्रॉप्स थे, जैसे आप समझे मोती की तरह, जैसे कोई चीज हो, या ओले की तरह, तो वो आसमान से उतरते थे, और वाइट बिल्कुल दूध की तरह, और मीठे जैसे हनी होता है, और सलवा जो बटेर से थे, एक छोटे छोटे परिंदे थे, उनके झुंड के झुंड आते थे और इतनी आसानी से उनको पकड़ लेते थे। कोई शिकार नहीं करना, कोई शिकार के पीछे भागना नहीं है, कोई कुछ ऐसी चीज नहीं थी, वो पकड़ लेते थे, और पूरे दिन के लिए ये खाना उनके लिए काफी होता था और होलसम था। हम देखें ऐसे परिंदों का गोश्त तो लजीज भी बहुत होता है, लोग बाकायदा इनके लिए शिकार करते हैं, और बहुत रेयर होते हैं ये, तो ये इनको फ्री मिल रहे थे और बगैर मुशक्कत के। यानी कोई ऐसा नहीं था कि उनको जाना पड़ता, कहीं ढूंढना पड़ता अपना रिस्क, कहीं कमाइयां करनी पड़ती, कुछ नहीं, वहीं के वहीं उनको लाके जिस जिस जगह पे वो होते थे, और उस दिन का मिलता था। अगर वो स्टोर करके रखना चाहते थे तो खराब हो जाता था, लेकिन पूरा दिन ठीक रहता था, अगले दिन और आ जाता था। तो अल्लाह ताला की तरफ से कितनी मेहरबानी थी। कुलू मिन तय्यिबात मा रज़क़नाकुम, खाओ पाकीज़ा में से जो जो हमने रिस्क दिया, पाकीज़ा चीजें खाओ जो हमने तुम्हें रिस्क दिया। वमा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, और हमने इनके ऊपर जुल्म नहीं किया बल्कि इन्होंने अपनी जानों पर खुद जुल्म किया। ये क्या से जुल्म करते थे, मैंने जैसे आपको बताया कि स्टोर करके रख लेते थे, वही कि अल्लाह के ऊपर कोई तवक्कुल नहीं है, वो अल्लाह जो हर रोज दे रहा है वो कल भी देगा ना। लेकिन इनको कहा गया था तुमने जमा नहीं करना, मगर ये फिर भी छोरी छुपे उसको जमा करते थे, फिर रिस्क को भी अपनी तरफ मंसूब करते थे कि ये हमारा ही कोई कमाल है, अल्लाह की देन नहीं समझते थे। और तय्यब क्या है, जिसकी सोर्स भी तय्यब है, सोर्स ऑफ इनकम भी तय्यब है, वो खुद चीज भी तय्यब है, यानी अल्लाह ताला ने इजाजत दी भी है खाओ पियो, सोर्स भी तय्यब है और वो चीज भी तय्यब है। तो ये अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी थी। और फिर जब ये 40 इयर्स तक वहां पे घूमते रहे ना, देखिए साया भी इनके लिए कैसा शेड था, अगर धूप के अंदर चलना पड़ता तो कितना मुश्किल होता, तो जहां जहां जाते थे साया रहता था इनके साथ। एक और बात हमें समझ आती है कि जब भी इंसान कोई गलत काम करता है ना, तो वमा दलमूना अल्लाह की तरफ ना कहो कि अल्लाह ने मेरे ऊपर कोई वो किया, अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा दलमूना, हमने नहीं जुल्म किया, हमने, लेकिन ये लो इंसान अपने आप पे खुद जुल्म करता है। आप ये देखें यहाँ पे एक पीछे आयत में, यहाँ पे जो 55 आयत में है, फअखदत कुमुसाई का तो आया, पकड़ लिया तुमको कड़क ने, जबकि हम पीछे सारी जगह देख रहे हैं ना कि जैसे बाथ ना कुम जल अनजल ना अलैकुम जल्लल ना, यानी अल्लाह ताला अपनी निस्बत कर रहे हैं ये सारी चीजें जो एहसानात है ना, अफाउ ना, तो यहाँ पे भी कैसा कहा जा सकता था, अखद ना कुम, हमने पकड़ा तुमको बिसायका सायका के साथ, लेकिन अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया, साय कड़क ने पकड़ लिया तुमको, अपनी तरफ क्यों नहीं निस्बत की, इसलिए कि जो कड़क के साथ मर जाना था वो एक बुरी चीज थी ना। हर एक चीज अल्लाह ही की तरफ से होती है, हर काम अल्लाह की तरफ से होता है, लेकिन बुराई की निस्बत अल्लाह की तरफ करना ये अदब के खिलाफ है। याद है इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब नियमतों का जिक्र किया तो सब नियमतों का अल्लाह की तरफ जिक्र किया, लेकिन जब बीमारी का कहा तो फरमाया जब मैं बीमार होता हूँ फहुवा यशफीनी, तो वो मुझे शिफा देता है, शिफा देता है अल्लाह मुझे, लेकिन बीमारी का नहीं कहा, जब अल्लाह मुझे बीमार करता है तो जो मुसीबत है जो चीज है इसकी निस्बत अगर अल्लाह की तरफ की जाती तो क्या होता, जो भी मुसीबत होती है उसके देने वाले को फिर इंसान पसंद नहीं करता, उसे बदगुमान हो जाता है, अल्लाह ने अपनी तरफ से नहीं निस्बत की, क्योंकि इंसान की अपने करतूत होते हैं ना जिनकी वजह से उसके ऊपर मुसीबत आती है। अब जब ये 40 साल गुजर गए और इनके पुराने लोग सारे जो फौत हो गए और नई जनरेशन आ गई, तो अब उनको कहा गया दाखिल हो इस शहर के अंदर। वइज़ कुलना उदख़ुलू हाज़िहिल क़रिया, अब मूसा अलैहिस्सलाम भी फौत हो चुके हैं, यूशा बिन नून अब नए पैगंबर हैं, तो कहा गया आप दाखिल हो जाओ इस बस्ती में। किस बस्ती में? वो जो पैलेस्टाइन है, बैतुल मकदस है, अब इनका जो आबाई जो शहर है। फकुलू मिनहा हैसु शिअ्तुम रगदन, और फिर खाओ इसमें जहां तुम चाहो, बा फरागत खाओ, जो मर्जी खाओ पियो, इसके अंदर रहो। वदखुलुल बाबा सुज्जदन, और इसके दरवाजे में दाखिल होना सजदा करते हुए, यानी झुकते हुए दाखिल होना, क्योंकि उस जमाने में हर, आपको पता है ना, शहरों के भी गेट्स होते थे, बड़ी बड़ी फसीलें होती थी, वो मतलब दीवारें उनकी होती थी ना चारों तरफ, और फिर उनके बड़े ह्यूज गेट्स होते थे, तो जब तुम गेट में दाखिल हो तो सजदा करते थे, यानी एज कॉन्करर जो है, जब तुम फातेह बन के उसमें दाखिल होगे तो अकड़ के नहीं दाखिल होना, अल्लाह का हुक्म था कि तुमने सजदा करते हुए झुकते हुए जाना, यानी ये मतलब नहीं सजदा जमीन के ऊपर रख के सर को तो फिर चलना, वो तो चल ही नहीं सकता ना इंसान, मतलब झुके हुए चलना, यानी एक आजी के साथ, गर्दने गुरूर से ना अकड़ी हो, झुकी हुई हो, रुकू की पोजीशन को भी सजदा ही कह देते हैं, ठीक है, इसीलिए हम जब बाज दफा सजदा करते हुए बस बिल्कुल ऐसे झुक जाते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी देखें, जब मक्का फतह किया था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे एंटर हुए थे मक्का में, पता है आपको? ऊंटनी पे सवार थे और आपका सर मुबारक ऐसे झुका हुआ था कि उसके कजावे से लग रहा था, इतने झुके हुए थे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजी देखें और अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे थे। तो सजदा करते हुए जाओ, वकुलू हितातुन, और कहते हुए जाओ बख्शिश देते बख्शिश देते, यानी माफी माफी, नगफिर लकुम खतायाकुम, हम बख्श देंगे तुम्हारी खताओं को, तुम ये कहते हुए जाओ। अब आप कहेंगे कौन से उन्होंने गुनाह किए थे, इंसान ऐसे ही खताकार है, तो तुमने इस तरह से करते हुए जाना ना, जो भी हमारी खताएं हैं माफ कर देना, अल्लाह माफ कर देना, अल्लाह माफ कर देगा, यानी इतनी हम्बलनेस के साथ एंटर होना। वसा नजीद उल मोहसिन, और हम जरूर देंगे एहसान करने वालों को। यहाँ पे मोहसिन किसको कहा जा रहा है? तो उसमें उनमें भी अच्छे लोग भी थे ना, बुरे भी थे अच्छे भी थे, तो फिर मोहसिन भी क्या माफी मांगे जी? यहाँ से पता चलता है कि ये ना कोई सोचे ओ मैं तो बड़ा नेक हूं, मुझे माफी मांगने की क्या जरूरत है, मैंने ऐसा क्या किया, सभी माफी मांगो, सभी तौबा इस्तगफार करते हुए। हित्तातुन, ये एक लफ्ज उनको कहा गया, आपने ये कहना है हित्तातुन कहते हुए दाखिल हो। अच्छा, ये लफ्ज इनको पहले नहीं पता था, यानी ये इनको कहा गया पैगंबर के जरिए, जाहिर है उनको तो नहीं, डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन पैगंबर के जरिए उनको ये कहा गया कि हित्तातुन आपने कहना। तो जो एहसान करने वाले होंगे, एहसान करने वाले कौन होते हैं? जो बुराई के बदले में भी भलाई करते हैं, वो लोग कि जो अल्लाह की इबादत ऐसे करते हैं जैसे अल्लाह को देख रहे हैं, अगर ऐसे ना कर सके तो ऐसे करते हैं जैसे अल्लाह उनको देख रहा है, एक्सेलेंस के लेवल पे इबादत करने वाले, तो हम उनको और ज्यादा देंगे, यानी क्या देंगे और ज्यादा, यानी उनके और ज्यादा इनामात देंगे, अल्लाह ताला उनके और दर्जे बुलंद करेगा, बताएं तो माफ होंगी, लेकिन मोहसिनीन के लिए जब तौबा इस्तगफार करेंगे तो जो उनकी खताएं होंगी, खताएं तो हर एक की होती हैं, अब हम कहेंगे अच्छा अगर कोई मोहसिन है उसके तो इतने गुनाह नहीं है, जितने भी हैं अल्लाह वो भी माफ कर देगा, और जब वो और इस्तगफार करेगा ना तो अल्लाह उसके दर्जे बुलंद करेंगे, जैसे नबी अलैहिस्सलाम, उनको तो तौबा की जरूरत नहीं थी, उनके तो कोई भी गुनाह नहीं थे, वो क्यों तौबा करते थे, उनके दर्जे बुलंद होते थे इससे, ठीक है। और वैसे भी कोई इंसान अल्लाह का हक नहीं अदा कर सकता, तो इंसान हमेशा तौबा करता रहे, अल्लाह तेरा हक तो कैसे अदा कर सकते, हम नहीं कर सकते। फबद्दल अल्लदीना ज़लमू, तो बदल डाला उन लोगों ने जिन्होंने जुल्म किया, जिन्होंने जुल्म किया यानी ये इस कौम के जो जालिम थे, कौलन इस कौल से, गैर अल्लदी कील लहुम, बात को गैर एक और बात से, अल्लदी कील लहुम जो उनको कही गई थी उस बात के अलावा एक और कौल से बात को बदल दिया, कैसे बदल दिया। हदीस में आता है कि उन्होंने हित्तातुन की जगह कहना शुरू कर दिया हिंततुन, हिंततुन, नून बीच में ऐड कर दिया, जिसका मतलब था गंदुम गंदुम। ये उन्होंने क्यों किया? हाँ, क्यों किया ये उन्होंने? उन्होंने वो जब उनको पैगंबर में बताया हित्तातुन, तो उन्होंने आगे से मजाक उड़ाया, हित्तातुन हित्तातुन, ये क्या चीज होती है हित्तातुन, ऐसे हमें कह रहे हो हमें जलील करने के लिए, हित्तातुन हित्तातुन, हम क्यों कहें हित्तातुन, हम तो जैसे जाएंगे हमारी मर्जी होगी हम वैसे जाएंगे और वह वो ही कहेंगे। तो ना झुक के गए बल्कि घिसट घिसट के जाने शुरू हो गए और हित्तातुन की जगह हिंतातुन हिंतातुन शुरू कर दिया। एक चीज होती है ना कि जैसे आप किसी को बताओ कोई सही चीज तो कहते हैं लो ये हमने कभी आज तक सुनी नहीं, ना हमारे माँ बाप ने कभी हमें ये हुआ, ना हमारे खानदानों में कभी ये बात हुई, तो ये क्या आपने नई बात ही बता दी, चले वो उस बात का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। ये नहीं सोचते कि हम तहकीक तो करके देखें, हो सकता है हमारे पास इल्म ना हो और ऐसी बात ही हो, लेकिन पैगंबर आके उनको ये बात बता रहे हैं कि अल्लाह ताला का ये हुक्म है, उसको मजाक में उड़ा रहे हैं, ये क्या बात हुई, हित्ता तो उनका है, हम नहीं कहते ये। तो और कौलन बात को गैर लदी की लाना, जो उनसे कही गई थी उसके अलावा बात से, फंजलना इस बात की वजह से हमने नाजिल किया इन पर जिन्होंने जुल्म किया था, इनमें से जिन्होंने इस तरह से हरकत की थी, रिज्ज़ मिनस समा, रिज्ज़ आसमान से, ये रिज्ज़ क्या था, ये क्या अजाब था इनके लिए। बाज तफासीर में लिखा हुआ है कि ताउन की जो बीमारी थी वो प्लेग की बीमारी इनके ऊपर आ गई थी, और बाज जगह पे है कि और कोई अजाब होगा जो अल्लाह की तरफ से आया, कोई वबा फूट गई, कोई और ऐसा हो गया। क्यों? बीमा कानू यफसुकून, इसलिए नहीं कि वो नया शहर था तो उसमें कोई उनको जर्म्स लग गए थे, हम तो यही रीजंस ढूंढते हैं ना, ये रीजन नहीं था, रीजन क्या था, बीमा कानू यफसुकून, इस वजह से कि वो खुल्लम खुल्ला नाफरमानी, ढीठ होके शर्म हया भी नहीं थी कि आप क्या कर रहे हैं, ये क्या हम बोल रहे हैं, हम क्यों इस तरह से अल्लाह के हुक्मों का मजाक करने लगे, खुल्ले वो के बेशर्मी के साथ। अब यहां से हमें क्या सबक मिलता है? क्या आपको कुछ बात समझ आती है यहाँ पे कि क्या नहीं करना चाहिए? हमें कभी भी अल्लाह ताला ने जो कुरान में, कुरान को तो खैर कोई कर ही नहीं सकता, मगर हदीस में भी उलमा कहते हैं इससे हमें सबक मिलता है कि कभी भी हम वर्डिंग्स ना चेंज करें, कभी हम वर्डिंग्स ना चेंज करें, यानी हम ये भी नहीं कर सकते कि इससे सिमिलर वर्ड हम ले आए, वो भी ना करें, क्योंकि उसमें भी वो बात नहीं होगी। जैसे मसनून दुआएं हैं अगर, तो उनको वैसे ही रहने दें, वैसे ही पढ़ें, जरा से भी उसमें चेंजिंग ना करें, क्योंकि जो चीज भी हदीस में भी है वो भी अल्लाह की तरफ से आई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे, उन्होंने एक दुआ आपने उनको सिखाई तो उन्होंने उस दुआ में सिर्फ नबी की जगह रसूल कह दिया, बात तो एक ही है ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नबी ही कहो जैसे मैंने तुम्हें सिखाया। इससे पता चलता है कि जरा भी नहीं आप चेंज कर सकते, तो जरा आगे पीछे नहीं करनी चाहिए। नंबर टू क्या बात है, बहुत अहम बात यहां से पता चलती है, आप लोग भी सोचा करें क्या समझ आता है। देखें उनको सिर्फ एक अल्फाबेट, एक हर्फ है ना, एक हर्फ उन्होंने ऐड किया था, उस पे उनको सजा मिली, इसलिए कि उन्होंने नहीं समझा कि ये हमारे लिए सही है जो अल्लाह की तरफ से है, बस हम अपनी तरफ से कुछ करेंगे जो हमारी मर्जी है। तो अगर एक हर्फ बढ़ाने से उनको सजा मिली, तो सोचें जो दीन में नई नई चीजें इजाद कर लेते हैं, नए नए काम इजाद कर लेते हैं, एक लेटर बढ़ाने पे ये सजा है, तो उनके लिए कितनी बड़ी सजा होगी कि दीन में कोई चीज नहीं है, दीन में नई नई चीजें बनाए, क्या वो काफी नहीं है जो अल्लाह ने उतार दिया, क्या दीन मुकम्मल नहीं हो चुका, इनकम्प्लीट था, जो अब हमें जरूरत पड़ गई है कि हम इसके अंदर नई चीजें डालेंगे, ये बहुत अच्छी चीज है, चलो ये दीन में दाखिल कर दो। तो जो अल्लाह का दीन जैसा है उसको वैसे ही रहने देना चाहिए, उसमें कुछ अपनी तरफ से इजाफे ना करो, कोई चीजें बिदात इजाद ना करो और बिदात पे ना चलो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी इस दीन में कोई नई चीज इजाद करेगा तो वो मर्दूद है, यानी रिजेक्टेड है वो चीज। आप उनकी तरफ देख लें कि उन्होंने क्या इजाद किया, और आज कितनी इजादें हो रही हैं और उनको भी नेकी समझा जाता है और कोई नहीं सोचते कि ये कोई गुनाह की बात है। तो शरीयत में चेंजेस करना, चाहे वो छोटी सी चीज हो, कहते हैं इससे फर्क क्या पड़ता है, फौरन सवाल क्या करते हैं, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है भाई, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि आपने काफी नहीं समझा अपने लिए अल्लाह के दीन को जो आ चुका है, आपने कहा मैं खुद कुछ और कर लेती हूँ नया, तो फर्क तो पड़ा ना। अल्लाह को पता नहीं था नाउज़ु बिल्लाह कि ये चीज नाजिल करनी है, ये चीज भेजनी है, जो हम अपनी तरफ से नई नई चीजें ईजाद कर रहे हैं। तो इसलिए नई चीजें ईजाद करना, नए काम ईजाद करना, ये सख्त गुनाह की बात है, इसको बिदअत कहते हैं, जो कि नहीं करनी चाहिए। सिर्फ कुरान और सुन्नत को फॉलो करें। बहुत सारे सबक हैं, खैर इंशाल्लाह ताला इन्हीं बातों पर भी हम गौर व फिक्र कर लें और इनको बार बार पढ़ें आयात को, और देखें कि हमारे लिए और कौन सी बातें हैं जो हम अपनी अमली जिंदगी में ला सकते हैं और किन चीजों से हमें परहेज करना है। तो अमल की बातें आप एक और तरफ लिखा करें, ताकि या उसको हाईलाइट करा करें, कि अमल की बातें ऊपर हेडिंग दें और नीचे उसके पॉइंट्स में लिखें, ताकि सब गड़मट ना हो जाए। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हमने जो पढ़ा है उसके मुताबिक हम अमल भी कर सकें, और जो बातें पिछली कौमों में थी जिसकी वजह से वो अताब का शिकार हुए, अल्लाह ताला उन सब से हमें महफूज रखे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुन।
وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.